Shri Advaita Gadadhara, Shri Vaisadi Gaura Bhakta Vrinda. कीर्तन की जय, गंगाधर हरे कृष्ण महामंत्र की जय, ग्रंथ राशि में भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
भगवते वासुदेवाय,
भगवते वासुदेवाय,
नमो भगवते वासुदेवाय,
कृष्णाय वासुदेवाय,
कृष्णाय वासुदेवाय,
देवकी नंदनाय च,
देवकी नंदनाय च,
नंद गोप कुमाराय,
नंद गोप कुमाराय,
गोविंदाय नमो नमः,
गोविंदाय नमो नमः,
जय श्री कृष्ण चैतन्य,
जय श्री कृष्ण चैतन्य,
प्रभु नित्यानंद,
प्रभु नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर,
श्री अद्वैत गदाधर,
श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा, तप्त कांचन गौरंगे,
तप्त कांचन गौरंगे,
राधे वृंदावनेश्वरी,
राधे वृंदावनेश्वरी,
वृषभानु सुते देवी,
वृषभानु सुते देवी,
प्रणमामि हरि प्रिये,
प्रणमामि हरि प्रिये,
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च,
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च,
कृपा सिन्धुभ्यैव च,
कृपा सिन्धुभ्यैव च,
पतितनां पावनेभ्यो,
पतितनां पावनेभ्यो,
वैष्णवेभ्यो नमो नमः,
वैष्णवेभ्यो नमो नमः,
पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं,
पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं,
भक्तरूपस्वरूपकं,
भक्तरूपस्वरूपकं,
भक्तावतार भक्ताख्यं,
भक्तावतार भक्ताख्यं,
नमामि भक्तशक्तिकं,
नमामि भक्तशक्तिकं,
जय श्री कृष्ण चैतन्य,
जय श्री कृष्ण चैतन्य,
प्रभु नित्यानंद,
प्रभु नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर,
श्री अद्वैत
वासवि गौर भक्त वृंदा,
वासवि गौर भक्त वृंदा,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम हरे राम,
हरे राम हरे राम,
राम राम हरे हरे,
राम राम हरे हरे,
ग्रंथा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने और उसको अध्ययन करने से अपार लाभ प्राप्त होता है। जो जो प्राणी इसको सुनते हैं, जो जो प्राणी इसको बोलते हैं या जो अनुमोदन करते हैं, सबका कल्याण होता है। श्रीमद् भागवतम के पांचवें अध्याय में 26 अध्याय हैं, जिनको जिनमें सबसे पहले हमने महाराजा प्रियव्रत के विषय में सुना और उसके उपरांत महाराजा ऋषभ देव और उनके सौ पुत्रों के विषय में सुना। ऋषभ देव के सौ पुत्र जिसमें से एक काशी कर्मकांडी ब्राह्मण बने, 10 उनके पुत्र, 9 पुत्र जो है 9 योगेश्वर बने और 10 पुत्र क्षत्रिय बने। तो 81 क्या बने? योगेश्वर बने, तपस्वी जो तपस्या करते हैं, और 10 पुत्र क्षत्रिय बने और 9 पुत्र 9 योगेंद्र बने। इस तरह से 100 पुत्रों का वर्णन हमने सुना। और ऋषभ देव तपस्या करने के लिए गए तो अपना राज्य अपने बड़े बेटे भरत महाराज को देकर गए। भरत महाराज, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम हरे राम। भरत महाराज बहुत ही सुंदर राज्य करते थे और बहुत समय तक राज्य करने के बाद वो तपस्या करने चले गए। डर मन करते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
आगे
तपस्या करने के लिए जंगल में अपना सारा राज्य, अपने सारे धन दौलत पत्नियां और दास दासी सब छोड़ के गंडकी नदी के किनारे पर जाकर तपस्या करने लगे। कोई आसक्ति नहीं थी उनके जीवन में। और एक दिन तपस्या कर रहे थे, अचानक से जिस गंडकी नदी के किनारे पर वो तपस्या कर रहे थे वहां पर एक हिरण दौड़ता हुआ आया। पीछे शेर लगा हुआ था। हिरण ने जैसे ही जंप मारा और शेर उसके पीछे ही था, वो जंप नहीं मार सका, लेकिन हिरण जो है उसकी मृत्यु हो गई और उसको एक छोटा सा बच्चा उसका पैदा हो गया। उस बच्चे को देखकर महाराजा भरत के हृदय में दया आ गई। उसने सोचा छोटा सा बच्चा है, अगर इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो कोई ना कोई जानवर इसको खा जाएगा, इसलिए इसको पालना मेरी जिम्मेदारी है। तो उसको पहले तो दया की, दया करके उसको अपने साथ अपनी कुटिया में लेके गया, उसको पालना शुरू किया और धीरे धीरे आसक्ति बढ़ती गई। महाराजा भरत जो अपना सारा घर, अपने संतान, अपनी पटरानियां, अपना धन दौलत छोड़ के आ गए थे, यहाँ पर आकर तपस्या कर रहे थे। सुबह शाम तीन टाइम स्नान करते थे गंडकी नदी में, संध्या वंदन करते थे, सारा कुछ छूट गया। सारा टाइम पूरा आसक्ति किसके अंदर लग गई? हिरण के बच्चे में लग गई। तो यहाँ से कथाओं से सिर्फ हमें ये देखना है कि हमको ये नहीं सोचना है कि वो बिचारे उनका पतन हुआ। सावधान हमें रहना है कि हमको कोई ना कोई, वो तो हिरण का बच्चा था, उसके अंदर आसक्ति हो गई। हमारे अपने बच्चे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चों में आसक्ति हो जाती। अपना तो सारा बोलते भाई हमें अपने में आसक्ति नहीं, पता चला छोटे छोटे में फिर आसक्ति हो जाती है। तो यहाँ से बता रहे हैं कि इतनी आसक्ति हो गई उस हिरण के बच्चे में कि दिन भर बस यही, उसी को खिलाना, उसी को पिलाना, उसी के साथ घूमना फिरना। और एक दिन क्या हुआ, हिरण के बाद कुछ हिरण का झुंड आया, उसको तो अपने साथ लेके गए। और इसको इतना प्रेम था उस हिरण के बच्चे के प्रति कि उसको याद करते 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 उसके प्राण निकल गए। और जैसे ही उसके प्राण निकल गए तो भगवान ये सिद्धांत बता दिया है भगवत गीता में, यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तंतमय वैतिकोन्ते सदा तद्भाव भावेता। हमको देखना चाहिए दिन भर सोचते किसके बारे में है, घर के बारे में सोचते। ऐसा बताया जाता है, ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि अंतकाल जो घर मंदर सुमरे प्रेत योनि वलवल उतरे। अगर घर अपने घर को याद करोगे ना तो प्रेत बन जाओगे। घर में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अंतकाल जो अपने संतान को स्मरण करता है तो उन्हीं के घर में हो सकता है, उन्हीं के घर में पशु बन के आ जाए। अंतकाल में आप तो अंतकाल हम सोचेंगे भाई अंतकाल में भगवान को याद करेंगे तो अंतकाल कभी भी आ सकता है। ये जो समय है वो भी अंत समय होना हो सकता है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अगर आपको अंतकाल में मुझे याद करना है तो उसका प्रोसेस ये है, तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धज। हर समय मुझे याद करना है, तुम्हारा कुछ नहीं है जो कि तुम अपने साथ लेके जाओगे, सिर्फ मेरा भजन ही तुम अपने साथ ले जाओगे। इसलिए याद करना है तो केवल मुझे स्मरण करो। एक्टिविटी अगर हम लोग घर में भी समय दे रहे हैं, घर की ड्यूटीज अगर करनी पड़ती है तो एक्टिविटीज जो है ना वो हमें कभी नहीं बांधती। ना भगवान की प्राप्ति में हमारा घर बाधा बनता है, भगवान की प्राप्ति में ना हमारी संतान बाधा बनती है, ना ही हमारी एक्टिविटीज बाधा बनती है। जो हमारे कार्य हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई क्या करता है, वो कार्य वो वस्तु हमें कभी भी भगवान की प्राप्ति में बाधा नहीं बनती। बाधा क्या बनती है? उन वस्तुओं में, उन व्यक्तियों में, उन एक्टिविटीज में जो हमारी आसक्ति है। मन में क्या है खोल के देखो। कभी कभी तो ऐसा होता है हाथ में माला होती है और मन में वही चल रहा है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये ऐसा करना है, अभी ये करना है, अभी माला कर रहे हैं और हाथ में ये होगा, ये माला खत्म करके मुझे ये करना है। उस टाइम पर काम भी अगर कोई कर रहे हैं ना तो भी हमें ये याद रहना चाहिए भगवान याद है। मन में यदि भगवान है तो बहुत सरलता से भगवत प्राप्ति होगी। और अगर मन में भगवान नहीं है फिर क्रिया से भगवान प्राप्त नहीं होंगे मन से। तो इसलिए वो स्मरण कर रहे थे, किसको? हिरण को स्मरण कर रहे थे। तो हिरण का ही जन्म प्राप्त हो गया। और जब वो हिरण बने तब उसने तौबा कर लिया, बोला मुझे पहले आसक्ति हो गई थी ना, अब मैं किसी को भी किसी के बारे में ना सोचूंगा, ना खाऊंगा, ना पीऊंगा। पशु होता है ना,
पशु को आहार और निद्रा में बहुत आसक्ति होती है, लेकिन हिरण की योनि में ना उन्होंने कभी कुछ खाया और ना ही विश्राम किया। बस रोते रहते थे कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। पूरे विश्व का मैं राजा था, पूरे विश्व का, भारत वर्ष जिसके नाम से बना है ये, उनका राजा मैं, अपना सब कुछ, धन दौलत बच्चे, अपना जागीर अपना जायदाद सोच के मैं आया हूँ तपस्या करने के लिए। और वहां पर वृंदावन में तपस्या, गंडकी नदी में तपस्या कर रहा हूँ और मेरी आसक्ति किसमें आ गई, जानवर के अंदर आ गई, तो मैं जानवर बन गया। तो आसक्ति को मिटाना है, और एक ही तरीका है आसक्ति को मिटाने का, जितना जितना श्रवण करेंगे भगवान के विषय में उतना उतना भगवान को स्मरण करेंगे। इसलिए कोशिश करनी चाहिए भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए शुद्ध भक्तों के द्वारा। तो उस हिरण ने कुछ खाया पिया नहीं, कुछ दिनों में ही मर गया, और मरने के बाद वापस उसे मनुष्य का जन्म मिला। फिर वो मनुष्य जन्म में फिर उसका नाम भरत ही रखा, लेकिन इतना ढीठ था कि कुछ भी नहीं करता था। मतलब वो कुछ भी करता इसलिए नहीं था कि कुछ भी करूंगा तो मुझे आसक्ति हो जाएगी ना, तो कुछ भी ना, उसको जो देते थे तो खाता था, नहीं देते तो नहीं खाता था, जिधर बिठाते थे बैठ जाता था, बिल्कुल जड़ हो गया था। इसलिए उसका नाम क्या हो गया था, जड़ भरत हो गया था। उसका वो ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ। उसका पिताजी उसको बोलते थे, भाई तुम ब्राह्मण हो, कम से कम गायत्री मंत्र सीख लो, ताकि कोई यज्ञ वज्ञ कराने के तुम काम आ जाओ। तुम्हारे भाई तो तुम अब जब तक मैं हूं तो पाल रहा हूँ, भाई तो तुम्हें निकाल देंगे कुछ तो। उसको 6 महीने लग गए मगर उसको एक भी मंत्र याद नहीं हुआ। तो उसको भाइयों ने बोला, किसी काम का नहीं है, जाओ खेत संभालो। खेत में जाके संभाल रहा था, अभी खेत भी क्या संभालता, वो जो भी पंछी और जो भी आते थे चरने के लिए, बोला ठीक है ये खेत भी भगवान का है, तुम भी भगवान होकर खाओ खाओ। किसी को रोकता कुछ नहीं था। उस टाइम पर क्या हुआ, कुछ जंगली लोग वहां पर आए जो कि देवी माता की बलि देते थे। तो देवी माता की बलि के लिए उनको एक बलि जो बल चाहिए था। उन्होंने देखा ये मोटा तगड़ा जड़ बड़ा, क्योंकि जिसको परेशानी होती है ना वो कभी भी है ना वो हमेशा सुकड़े रहते हैं, इनको तो कोई परेशानी नहीं थी, इतना मोटा मोटा। उसने बोला देवी तो खुश हो जाएगी इसकी बलि, इसको लेके जा रहे हैं वो तो खुश है। उसको लगाया चंदन वंदन लगाया, हार वार पहना, वो तो तब भी खुश है, और उसको खिला पिला के बलि के लिए बिठा दिया तब भी खुश था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर घटना होती है कि देवी जिसके सारे वो जो जंगली लोग थे देवी की उपासना कर रहे थे, लेकिन देवी ने जब देखा कि ये तो भगवान का भगत है, कुछ बोलता नहीं है, हमेशा भगवान को स्मरण करता रहता है और ये बलि देना चाहते हैं, तो देवी देवता भी भगवान के भक्त के ऊपर कष्ट नहीं आना देते, वो भी उनको प्रोटेक्शन करते अपने भक्तों। उसी समय जो देवी की प्रतिमा थी, बहुत बड़ी काली माता की प्रतिमा थी, उसमें से देवी प्रकट होती हैं, और भागवतम में लिखा हुआ है देवी सबसे पहले उस जो डाकुओं का सरदार है ना, जो शिकारी, सबसे पहले जो उसका अपना भक्त है उसका पहले सर काटती है, सारे सरदार के नीचे जो भी जितने भी डाकू थे उन सबका सर काटती है, और बोलती है तुम लोगों ने इतना बड़ा अपराध किया है कि एक वैष्णव भक्त को आपने मारने की चेष्टा की है। मैं तो खुद भी, देवी देवता भी भगवान के ही दास है, तो बोला मैं अपने स्वामी को कभी भी दुखी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे स्वामी, अगर उनके भक्त को कोई दुख होता है तो मेरे स्वामी को कष्ट पहुंचता है, तो इसलिए मैं अपने भक्तों को तो मार सकती हूँ मगर वैष्णव जो विष्णु के भक्त हैं उनकी मुझे रक्षा करनी है। तो वहां पर देवी माता जो है वो जड़ व्रत की रक्षा करती है। तो वो वहां से निकलता है। एक बार क्या हुआ, सौम्य देश के राजा रघुगण जो है उनके 4 काहार उसको पालकी में बिठा के आ रहे होते हैं, लेकिन एक काहार की तबीयत खराब हो जाती है। अब ढूंढ रहे हैं कि चौथा काहार तो जरूरी चाहिए ना जो पालकी उठाए, देखते हैं भाई हे जड़ भरत जो है वो तो है ना बहुत पहलवान लगता है। बोला ए पहलवान क्या कर रहे हो, तो बोला जो बोलो मैं करूं। तो बोला राजा का एक काहार बीमार हो गया, आप इसको उसकी पालकी को लेके चलो। तो बोला ठीक है। अभी उसको कोई एक्सपीरियंस था नहीं पालकी उठाने का, वो जा रहे हैं नीचे से देख रहे हैं फर्श पे, कोई कीड़ा आए तो जंप कर दे, कोई चुंटी आए तो जंप कर दे के कहीं उसको ना लग जाए मेरा पैर। तो जैसे वो जंप करता था अभी पालकी के अंदर राजा बैठा हुआ है, उसको इतना गुस्सा आ रहा था, बोला तुमको सीधी तरह से चलना नहीं आता, तुमको अक्कल नहीं है, कितना मैं परेशान हो रहा हूँ, कभी किधर से जंप कर रहे हो। तो सारे दूसरे काहर बोलते हम तो पहले से ही प्रैक्टिस रहे हैं, तो हम लोग तो सही चल, ये जो नया है ना वो उछल कूद कर रहा है। तो उसको बोलता है, बोला तुम कोई कमजोर हो, तुम इतने मोटे लगे पड़े हो, तुमको पता नहीं है कैसे चलना है, कितना परेशान किया है मुझे। तभी जरा बड़ा बोलता है, वाह मैं बालकी उठा रहा हूँ, तुम बालकी के अंदर बैठे हुए हो और परेशान भी तुम हो रहे हो, और तुम बोल रहे हो कि शरीर मोटा, ये जो मैं तो शरीर हूं ही नहीं, ये शरीर मोटा है, शरीर है ना चल रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, पहली बार पूरे जीवन में जड़बड़त बोलना है, बोल रहा है और बोल रहा है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, ऊपर बालकी में बैठे हुए हो, कुछ दान वान देते नहीं हो और चला रहे हैं हम लोग तो, और भी हम पे भी रोक चला रहे हो, समझते क्या हो अपने आप को, बताओ तो कहाँ के राजा हो तुम। तभी वो बोलते हैं, मैं ना सोवियत देश का राजा हूँ। बोला अच्छा, नीचे उतरो तो सही। तो नीचे उतरता है और उसको बोलता है, तुम्हें बताए सोवियत देश कौन से प्रांत में आता है? बोलता भारतवर्ष में। बोला मैं मुझे जानते हो भारतवर्ष किस पे किसके नाम से बना है? बोला हाँ, कोई बहुत पहले एक राजा होता था, राजा भरत, उसके नाम पे बना। बोला वो राजा भरत मैं हूँ, जिसके नाम पे ये पूरा भारत वर्ष है, उसमें एक छोटा सा प्रांत है सोवियत देश, वहां के तुम राजा हो और तुम इतना घमंड कर रहे हो, मैं तो पूरे भारत। बोला तो उसके चरणों में गिर गया, बोला मुझे आप मुझे उपदेश दो। तो बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं, भवाती उपदेश जिसको कहते हैं। वो कहते हैं कि पहले जमाने में लोग जाते थे जंगल में, और जंगल में सोचते थे कि पेड़ की लकड़ियां अच्छे से लेकर आएंगे और शहर में आकर उनको बेचेंगे तो बहुत सारा धन मिलेगा। लेकिन जंगल में जाते ही उनको रास्ता भूल जाते थे, वहीं वहीं भटकते 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 प्राण लेते थे। तो बोला ये कौन सा उपदेश है, तो समझ में नहीं आया। बोला यही हम लोग संसार में करते हैं, भगवान से प्रॉमिस करते हैं संसार में जाएंगे, आपका नाम लेंगे, नाम लेके वापस आपके पास आएंगे, संसार में आके भूल जाते हैं कि आए क्यों हैं। किसी से भी पूछेंगे भाई, सब बोलेंगे बिजी हैं। किसी को भी बोलोगे ना भाई आपके पास समय है, किसी के पास समय नहीं है, सब बिजी हैं, सबके पास इतना काम है कि उनके पास टाइम ही नहीं है। उनसे पूछो आपको करना क्या है जिसके लिए आप बिजी हो, करना सिर्फ एक ही काम है, भगवान को प्राप्त करना है, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है मनुष्य जीवन का। मानुष भई प्राप्त मानुष देहिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बिरिया, बस ये भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है, और किसी और कार्य से तेरे कितने न काम, बाकी जो भी कर रहे हैं ना वो सब फिजूल है। कितनी दफा सुना होगा हमने, कितनी दफा सुना होगा और फिर भी भूल जाते करना क्या है। वही संसार में ये करो वो करो ऐसे करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, अभी तक बुढ़ापा भी आ गया तभी भी भगवान के मिलने के बारे में नहीं सोचते। तो इतना सुंदर उपदेश देने के बाद जो राजा रघुगण है उनको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं मुझे ना आप एक सरल उपाय बताइए जिससे मैं भगवत प्राप्ति कर सकूं। तब बोलते हैं रहु गणेश तपस्या नहीं आती, वो भगवान तपस्या से नहीं मिलते, ना दान देने से मिलते हैं, ना वेद पढ़ने से मिलते हैं, और ना ही यज्ञ करने से मिलते हैं। तब रहु राजा पूछते हैं फिर बताओ मिलते कैसे हैं? तब बोलते बिना महत पात्र रजोभिषेक, जब तक भगवान के किसी शुद्ध भक्त के चरणों की सेवा नहीं करोगे, जब तक किसी शुद्ध वैष्णव गुरु का आश्रय नहीं लोगे, भगवान चाहकर के आपको नहीं मिलेंगे। किसी शुद्ध वैष्णव के पास जाओ, उनसे दीक्षा प्राप्त करो, उनकी सेवा करो, तब कहीं जाकर आपको भगवत प्राप्ति होगी, वरना पूरी जिंदगी माला सटकाते रहो कोई फायदा नहीं है। किसी शुद्ध वैष्णव के आश्रय में जाना पड़ेगा। और इतना सुनने के बाद रघुगण महाराज जो है उनसे उनको प्रणाम करते हैं, महाराज जरभरत की भी वहां पर उद्धार हो जाता है। उसके बाद महाराज परीक्षित पूछते हैं शुभदेव गोस्वामी से कि ये सारे ब्रह्मांड, ये सारे ग्रह नक्षत्र भगवान के रूप में किस तरह से टिके हुए हैं, कैसे ये सारे संसार में भगवान जो है वो फैले हुए हैं, और अनंत मतलब किस तरह से मुझे ये समझाइए, यानी स्थान के विषय में। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अलग अलग टॉपिक्स होते हैं श्रीमद् भागवतम में, उसमें क्या था अत्र सर्ग विसर्ग स्थान, स्थान मतलब कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन से सागर कहाँ पर है, उनके विषय में वो सब पूछते हैं। और उसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आप 7 दिन के लिए यहाँ पर बैठे हो, 3 दिन गुजर गए और अभी आप मुझसे ये पूछ रहे हो। अगर अनंत शेष अपने 1000 फणों से इसका वर्णन करने की चेष्टा करे तो अनंत जन्मों तक भी वर्णन नहीं कर सकेंगे, इतना विशाल है ना इसका वर्णन है। लेकिन फिर भी वो 5 अध्यायों में भूगोल के विषय में बताते हैं और 4 अध्यायों में खगोल के विषय में बताते हैं, 2 अध्यायों में नरक के विषय में बताते हैं और नरक के 5वें सिकंद के अंत में नरक का वर्णन करते हुए अलग अलग अपराध के अलग अलग नरकों का वर्णन करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में मांसाहार करता है तो उसे कुंभीपाक नरक में भेजा जाता है। कुंभीपाक नरक में बहुत बड़ी बड़ी कड़ाई होती है, 1000 लीटर तेल उसके अंदर गर्म किया जाता है, खोलने लगता है तेल, तब उस व्यक्ति को जो कि मांसाहार करता है उसके अंदर डाला जाता है और बहुत ही वेदना दी जाती है, उसको पकाया जाता है लेकिन उसकी क्योंकि यातना शरीर की देह होती है तो वो मरता नहीं है, चिल्लाता है, चीखता है और उसके बाद जो शराब पीते हैं उसको उसको तप उसको आईपान नरक में भेजा जाता है। आईपान नरक में क्या होता है, जमदूत रस्सियों से उसका मुंह खोलते हैं और खोलता हुआ सीसा उसके कान में, नाक में और मुंह में डालते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं, बहुत वो जो नरक में जाते हैं बहुत क्षमा मांगते हैं और उनके चरणों में गिरते हैं। बोला तब तुम्हें अक्ल नहीं आई जब तुम अपराध कर रहे थे, अब तुम्हें अपराध की सजा भुगतनी पड़ेगी। जो पर स्त्री या पर पुरुष को संग करते हैं वो तप्त सुरमी नाम के नरक में जाते हैं जहाँ पर बड़े बड़े स्तंभ के रूप में स्त्रियां बनी हुई होती हैं, उनके अंदर अग्नि जल रही होती है, अग्नि की तरह तपते हुए उन खंभों के साथ उनको चिपकाया जाता है। बोलता है आनंद किया था ना ऐसे करो। और जो एकादशी के दिन जो अनाज खाते हैं उनको कृमि भोजन नरक में भेजा जाता है। वहां पर ऐसा नरक है कि बहुत बड़ा दरिया है, वहां पर कीड़े हैं खाली और कीड़ों वाले उस दरिया में उसको भेजा जाता है। बोलता है एकादशी के दिन पाप खाया है ना, अभी तुमको भोजन में ये कीड़ों का सेवन करना पड़ेगा। और जो व्यभिचार करते जो जुआ खेलते हैं या तो फिर उनको एक है ना रौरव नाम के नरक में भेजा जाता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पक्षी होते हैं जिनके बड़ी बड़ी नोकदार चोंच होती है, उसके मांस को उसको खींचते हैं। तो इस तरह से अलग अलग नरकों के विषय में सुनाने के बाद यहाँ पर 28 नरकों का वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित ये तो मैंने तुमको बस थोड़े नरक बताए हैं, वैसे तो बहुत सारे नरक हैं लेकिन मैंने तुमको बस थोड़े से बताए हैं। तभी वैसे तो हर एक अपराध के आप जो मन से करते हो ना उसके अलग अपराध है, जो उसका अलग नरक है, जो बुद्धि से करते हो उसका अलग नरक है, जो सोचते हो, जो हाथों से करते हो मतलब कर्म मन कर्म वचन से जो जो अपराध करते हैं उनके लिए नरकों में जाना पड़ता है। तब परीक्षित महाराज हाथ जोड़ के रोते हुए पूछते हैं, यहाँ तक 5वां खत्म होता है और 6ठा स्कंद प्रारंभ होता है, तब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि सभी लोग तो पाप करते हैं, क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पाप न किया हो, हर कोई तो पाप करता है मन से वचन से कर्म से, तो क्या सारे लोग नरक में जाएंगे, आप मुझे नरकों का वर्णन मत कीजिए, अब तो आप मुझे ये बताइए कि जीव का नरक से उद्धार कैसे हो, कैसे जीव जो है वो नरक जाने से बचे। तब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रायश्चित करना चाहिए, छोटे अपराध का छोटा प्रायश्चित, बड़े अपराध का बड़ा प्रायश्चित, अगर कोई अपने जीवन में प्रायश्चित कर देगा तो उसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तभी बोलते हैं ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, प्रायश्चित करने के बाद भी हृदय के अंदर अपराध का तो भाव ही रहेगा। प्रायश्चित जैसे अगर कोई अपराध करता है और शास्त्र में लिखा है गंगा में स्नान करोगे तो आपका पाप नष्ट हो जाएगा, गंगा में स्नान करके मन में तो वही मांसाहार की वृत्ति है, वही शराब पीना, वही गलत काम करना, तो वो बाहर आके तो वही काम करेगा, मन ये कुंजरे शोचनम, ये तो वैसे है जैसे हाथी स्नान करके आ जाए फिर वापस अपने आप को मिट्टी से खराब कर दे, तो इसका क्या फायदा। ऐसा उपाय बताइए कि मन से अपराध करने की वृत्ति ही समाप्त हो जाए। तब वे कहते हैं कि अगर है ना कोई अपने मन अपने जीवन में ज्ञान का उपदेश लेता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो अगर उसको पता चल जाएगा कि भाई मैं ये अपराध करूंगा तो मुझे ये पनिशमेंट मिलेगी, नरक में जाना पड़ेगा, तो अगर कोई ज्ञान प्राप्त करता है फिर वो तपस्या करता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, और जब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, शम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, अपने मन को कंट्रोल करता है और गलत कार्य नहीं करता है, तो धीरे 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 उसको गलत कार्य ना करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तभी शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, आप जिन उपायों के बारे में बता रहे हो ना कि मन को कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये कोई दूसरे युग के लिए हैं। इस कलयुग के लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें, सारा दिन तो व्यभिचार देखते हैं और फिर कैसे वो ना इस ये सब पालन कर सकते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, ये तो ऐसे ही है। कुछ समय के लिए अगर वो दमन कर भी लेंगे, जैसे बांसों का जो झुंड होता है उसमें जब अग्नि लगती है तो बांस समाप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर जब वर्षा आती है तो उगने लग जाते हैं। तो अपराध के लिए पहले तो अपने आप को छोड़ेंगे, सोचेंगे कि ठीक है अपराध नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा गलत कार्य करने का तो जीव गलत कार्य करना शुरू कर देगा। तो फिर आप ये उपाय नहीं बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मन में अपराध करने की इच्छा ना हो, पिछले सारे अपराध भी समाप्त हो जाए और आगे कोई अपराध हो भी नहीं और भगवत धाम की भी प्राप्ति हो जाए, कोई सरल उपाय बताइए। तब शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, ऐसा एक उपाय तो है परंतु उसको सब करेंगे नहीं, इसलिए मैं नहीं बताऊं। बोला भले नहीं करें, आप बताओ तो सही कौन सा उपाय है। तब वे कहते हैं, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुन्वन्ति काशेय निहारम इव भास्वता। सिर्फ एक ही तरीका है कि हमारे सारे पिछले अपराध समाप्त हो जाए, इस समय भी अपराध करने की वृत्ति ना हो और आगे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। सिर्फ एक ही तरीका है केचित, और वो सिर्फ कुछ ही लोग करेंगे, सबको ये बात समझ में ही नहीं आएगी। बोला क्या? केचित केवलया भक्त्या, अगर कोई सिर्फ केवलया मतलब सिर्फ भक्ति करेगा, और किसकी करेगा? वासुदेव परायण। अगर कोई श्रीमद् भागवतम 6.1.15 भागवतम का श्लोक है कि अगर कोई सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेगा, भगवान श्री कृष्ण के श्रवण करेगा, उनकी सेवा करेगा, और वासुदेव परायण, अगर वो भगवान से प्रेम करेगा तो हृदय से अपराध समाप्त हो जाएंगे। हृदय के अंदर, अभी देखो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने का क्या रूल क्या है, आप जब अगर कोई बोलेगा ना ये हरे कृष्ण वाला है तो आपको पता है कि ये नॉन वेजिटेरियन नहीं खा रहा होगा, ये खंडा लहसुन भी नहीं खा रहा होगा, जो खाता होगा पहले भोग लगाता होगा, सुबह को उठ के आरती करता होगा, शाम को आरती करता होगा, भगवान की सेवा करता होगा, और जब वो इतना भगवान के साथ टच है, इतना जब भगवान की सेवा कर रहा है, गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे अगम धुनवंति कासेन, उसके पुराने जन्म जब हम नाम जप करते हैं, वो 16 माला जप करता है, जो 16 माला यानी कि 27,000 बार जब वो बोल रहा है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो उसके एक नाम उच्चारण करने से जब इतने सारे पाप नष्ट हो सकते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि कितना सारा नाम जप कर रहा है, वो सेवा कर रहा है, साधना कर रहा है, भोग ऑफर करके खा रहा है, श्रवण कर रहा है। तो अगम धुन्वंति कासेन निहारम, जिस तरह से बहुत बड़ा अंधेरा कमरा हो, एकदम डार्क हो, अंधेरा हो, सालों से बंद पड़ा हो, अगर अचानक से उसकी खिड़की खोल दी जाए और बाहर से सूर्य देव प्रकाशित हो जाए, तो क्या वो अंधेरा कमरा ये बोलेगा या अंधेरा ये बोलेगा कि भाई बहुत सालों से मैंने यहाँ डेरा जमा दिया है, तो सूर्य के आने से मैं थोड़ी ना अपना राज्य छोड़ के जाऊंगा। नहीं, अंधेरे को तो वहां से जाना ही पड़ेगा। इसी तरह से जो भगवान का नाम लेता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान को प्राप्त करता है। तभी शुकदेव गोस्वामी ने जब इतना बताया, तभी परीक्षित महाराज बोलते हैं कि केवल नाम लेने से केवल कृष्ण की भक्ति करने से ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं? वेदों में तो बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, ये करो, वो करो, और आप बोलते खाली भगवान का नाम लेके उनकी सेवा करने से सब अपराध हो जाएंगे खत्म। तो फिर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी एक बहुत सुंदर इतिहास बताते हैं। कहते हैं कन्या कुब्ज क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम अजामिल था। अजा का मतलब होता है माया और मेल का मतलब होता है मिल जाना, यानी जो माया से मिल जाए। असल में ये कहानी किसी व्यक्ति की नहीं है बल्कि हमारी है। अजा मतलब माया और मिल मतलब मिल जाना। हम सब इधर संसार में आते हैं और माया से मिल जाते हैं। और वो बहुत ही सुंदर भगवान की भक्ति करता था, नाम जप करता था, ब्राह्मण परिवार में था। एक दफा अपनी यज्ञ की समिधा इकट्ठी करने के लिए जब वो जंगल में जाता है तो वो एक शूद्र को और एक वेश्या को आलिंगन करता हुआ देखता है। हृदय में इच्छा होती है कि वो शूद्र कितना आनंद प्राप्त करता है तो इतना आनंद मैं भी प्राप्त करूं। जब हृदय में ऐसी इच्छा आती है वो सोचता है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो ब्राह्मण हूँ। लेकिन फिर भी जब आप कोई गलत दृश्य देखते हो तो उसकी ओर आकर्षण बढ़ने लगता है। इसलिए शुरू से ही भगवान भगवत गीता में कहते हैं अपनी इंद्रियों को बचाओ। अभी यहाँ पर तो ये बताया जा रहा है कि वो एक बार उसने ये दृश्य देखा, घर में जा रहा है, यज्ञ कर रहा है, उसको वही याद आ रहा है, सेवा कर रहा है, उसको वही याद आ रहा है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते आज के इस युग में ऐसे दृश्य तो हर ओर देखने को मिलते हैं, है ना। 24 घंटे में 22 घंटे तो वैसे कि है ना, किसी के हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब चल रहा है, कॉलेजों में, बाजारों में, सिनेमा घर में, हर जगह पर ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही दृश्य देखकर आज की जो न्यू जनरेशन है वो बढ़ रही है, तो उनके हृदय में कितने अपराधों की इच्छा होती होगी। लेकिन यहाँ पर वो क्या करते हैं, अजामिल जाते हैं उस वेश्या के पास और बोलते हैं कि मुझे आपके साथ विवाह करना है। वेश्या भी तैयार हो जाती है, आती है, बहुत समय तक भोग करने के उपरांत उसको बहुत सारे संतान उत्पन्न होते हैं, 10 बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात बताई जा रही है कि आप जब भगवान की भक्ति करते हो वो नाश नहीं होती है। पहले वो ब्राह्मण था, नाम जप कर रहा था, भले ही उसके मन में अपराध आ गया, लेकिन कुछ संत उसके घर पे आए, उसकी पत्नी गर्भवती थी तो पत्नी को बोला कि आपके गर्भ में जो संतान उत्पन्न होगा उसका नाम नारायण रखना। तो उस समय अजामिल घर पे नहीं था, इधर से ब्राह्मण बाहर जा रहे थे, अजामिल वापिस आ रहा था। अजामिल बहुत पापी हो गया था और बोलने लगा क्यों आए थे ये? तब बोला कि ये हरे कृष्ण, ये आपके पुत्र के नामकरण के लिए आए थे। वैसे भी तो छठी तो किसी न किसी के द्वारा करनी थी ना। वेश्या बोलने लगी नाम रखे गए नारायण। बोला ठीक है चलो इसके भी पैसे बच गए, नाम रखते है ना, अब इसका नाम नारायण रखेंगे, कोई ना कोई नाम तो रखना था। बच्चा उत्पन्न हुआ और संतान उत्पन्न होने के बाद उसका नाम नारायण रखा। अजामिल बहुत प्रेम करता था अपने संतान से, हरे कृष्ण, बहुत ज्यादा प्रेम करता था। जब भी वो खाता था, पीता था, जो भी करता था तो सामने उसको नारायण 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 याद रहता था। तो इसलिए यहाँ से हमें ये देखना चाहिए कि घर में जो संतान है ना उसका नाम भी भगवान के नाम से अगर रखेंगे तो उससे भी हम तर जाते। पहले मैं अभी बोलते हैं अभी घर में संतान तो कम रहते हैं, कोई संतान किसी को, घर में कोई पशु भी पालो ना उसका भी नाम राम रख दो, राम राम, कोई तोता हो, कोई कबूतर हो, उसको भी रामो रामो कहकर पुकारो, तो उससे भी ना कल्याण हो जाएगा, कम से कम नाम तो भगवान का निकलेगा। तो समय बीतने लगा। फिर क्या होता है कि एक दिन समय पूरा होता है, 80 साल की आयु गुजर जाती है और एक दिन यमदूत आते हैं, 3 यमदूत आते हैं अजामिल के प्राण लेने के लिए। और अजामिल उनको देखकर बहुत ज्यादा भयभीत होता है। वो जैसे ही इन यमदूतों को देखता है तो बहुत ज्यादा डर लगता है उसको, और सामने देखता है उसका पुत्र नारायण होता है। उसने सोचा कि मैं ही देखकर नारायण यमदूतों को डर रहा हूँ तो नारायण को बोलना, नारायण, ऐसे जैसे ही उसने नारायण बोला है तो उसके उसी समय वो प्राण निकालने वाले थे, लेकिन जैसे ही नारायण मुख से निकला है तो भगवान के पार्षद वहां पर आते हैं और पार्षद उन यमदूतों को बोलते हैं कि ये भगवान का नाम ले रहा है, इतना भगवान का शुद्ध भगत है, इसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है और आप इसको लेके जा रहे हो, आप जाओ किसी पापी को लेने के लिए, ये तो हमारा, इसको तो हम लेके जाएंगे, ये तो हमारा आदमी है। तभी यमदूत बोलते हैं आपको गलत फहमी हुई है, ये आप लोगों का नहीं है, ये तो बहुत पापी है, इसने ये तो ब्राह्मण होते हुए इसने इतने सारे पाप किए हैं, ब्राह्मण था और एक वेश्या से उसने संग किया, इतना बड़ा पापी है, तो आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये भगवान का भक्त नहीं है। तो बोला आपने सुना नहीं इसने आखिर में क्या बोला, बोला इसने हमारे भगवान का नाम लिया है, भगवान का नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तभी कहने लगे कि इसने भगवान का नाम थोड़ी लिया है, भगवान का नाम लेने से पाप नष्ट होते हैं ना, लेकिन इसने तो किसका नाम लिया है, अपने पुत्र का नाम लिया है। तो हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम, बोले ये नारायण इसके पुत्र का नाम थोड़े है, नारायण तो हमारे स्वामी का नाम है, आप अगर अपने बेटे का नाम कृष्ण रखते हो या राम रखते हो या नारायण रखते हो तो असल में वो किसका नाम है, भगवान का नाम है, इसीलिए तो हमने रखा है। बोले डिक्शनरी में भी जब आप खोलोगे ना, भाई राम किसका नाम है, बोलेंगे लॉर्ड विष्णु का नाम है, कृष्ण किसका नाम है, तो वो कृष्ण का असल में उसका नाम है। अगर हम लोग रखते हैं तो भी पार्षद तो यही सोचते हैं, आप किसी कभी कभी कोई बोलता है ना मन नहीं लगता हमारा नाम जप करने में, भले आपका नाम जप करने में मन नहीं लगे लेकिन वो सुनने वाला यही सोच रहा है कि मुझे पुकार रहा है, तो बस उसका मन लगना चाहिए जिसका नाम है, वो खुश रहे, वो अगर संतुष्ट होता है तो फिर ठीक है। नाम अगर मुख से भी उच्चारण होता है, भले मन में नहीं होता है, तो भी भगवान देखो अजामिल ने तो मन से नाम नहीं लिया था, वो तो ऐसे ही अपने बेटे को याद कर रहा, उसको तो उस समय ये भी याद नहीं रहता कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, फिर भी उसको भगवान के पार्षद बुलाने के पार्षद उठाने के लिए आए हैं। तो अगर हम लोग ये सोच कर भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम, भले मन नहीं लगता लेकिन इतना तो जानते हैं ना कि नाम किसका है, भगवान का नाम लेते। तो वस्तु के अंदर शक्ति होती है, वस्तु जो है जैसे हर वस्तु के अंदर पावर होता है, एक अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की वायर होती है, हमको पता नहीं उसके अंदर करंट है, उसको पकड़ेंगे तो क्या वो वायर हमको करंट नहीं लगाएगी क्या, वो अगर खुली हुई तार है हम पकड़ेंगे तो करंट लगेगा ना, उसी तरह से भगवान के नाम में पावर है, भले आपको उसके पावर, एक मेडिसिन भी रहते हो ना मत्थे के सूर की, उसको भी अगर आप खाते हो आपको नहीं पता उसका फॉर्मूला क्या है, अगर आपको पता है कि ये टेबलेट है मैं खाऊंगा तो क्या होगा सर का दर्द दूर होगा, उसी तरह से यहाँ शास्त्र कहता है अगर नाम जप करोगे, गुरु महाराज ने कह दिया, शीला प्रभुपाद जी कहते हैं चार नियम का पालन करो 16 माला जप करो वैकुंठ जाने की गारंटी आपकी, और इतना सर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरण व्रजा अहम तुम सर्व पापेभ्यो, तुम सबको छोड़ो मेरी शरण में आ जाओ मैं तुम्हें सारे पापों से नाश कर दूंगा। तो भगवान की बात कौन सा ऐसा हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है कि भगवान की बात मानने से हम इनकार करते हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो हम भगवान की बात नहीं मान रहे, हम शास्त्रों की बात नहीं मान रहे, तो वहां से भगा दिया यमदूतों को। यमदूत डायरेक्ट जाते हैं यमराज के पास और बोलते हैं कि हमें तो ये बताइए कि अथॉरिटी कितनी है संसार में, हमको ये तुम्हारा डंडा लो तुम्हारा पाश लो, अभी हम लोग जाएंगे नहीं कभी भी किसी को लेने के लिए, इतनी बड़ी इंसल्ट हो गई हमको, हमारी वहां से धक्के मार के निकाल दिया। यमदूत पूछते यमराज पूछते हुआ क्या, बोला हुआ क्या एक अपराधी था, अपराधी को लेने गए और वहां पर भगवान के चार पार्षद इतने सुंदर चार जाए और वो हमको वहां से भगा कर निकाल दिया। बोला फिर क्यों आए थे वो, बोला कुछ नहीं उन्होंने नारायण बोला खाली, अपने बेटे को बुलाया। बोला अच्छा भगवान का नाम लिया था, भगवान का नाम लिया और तुम फिर भी वहां पर है, वो तो शुक्र करो कि तुम्हारे प्राण बच गए, आइंदा से अगर कोई भगवान का नाम लेना उसके निकट भी नहीं जाना। बोला अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। बोला किसी के मुख से हरि का नाम निकल जाए उसके नजदीक मत जाना, और क्योंकि उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। तो यमदूत पूछते हैं अच्छा ऐसा है तो हमें ये बता दीजिए कि हम किसको लेकर आए और किसको नहीं लेकर आए, ताकि रोज रोज हमको है ना इंसल्ट नहीं हो हमारी जिधर 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 जाए। तो कि भले कोई भगवान का नाम प्रेम से नहीं भी लेता है, यमदूतों को यमराज कहते हैं, संकेत्यं पारिहासं वा स्तोभ्यं हेलनमेव वा वैकुंठनाम ग्रहणम अशेष अगहरम। तो बोला संकेतम, अगर कोई संकेत देते हुए, जैसे पहले जमाने में क्या होता था, जैसे संत लोग प्रसाद खाते थे ना, नमक कम होता था तो नमक मांगना होता था, वो क्या बोलते थे, राम रस दो। और है ना रोटी मांगते थे, रोटी राम दाल राम ऐसे बोलते ना, दाल राम। तो बोला अगर भगवान का नाम संकेत लेते हुए भी अगर वो बोलते हैं किसी का संकेत देते हुए तो भी, और पारिहास्यम, और अगर कोई किसी का मजाक उड़ाते हुए, पारिहास्य मतलब कोई अगर हरे कृष्ण कर रहा है और कोई मजाक उड़ा रहा है, हे वडायन हरे कृष्ण वारा सजो डी पाण भी पंहिंजी निंड ख़राब कर, मेंजी घंटियूं वजाए करे हरे कृष्ण, खाली अगर उसे पारिहास्य मजाक उड़ाते हुए भी करते हैं तो भी हम हेल, और हेल मतलब अगर कोई मनोरंजन करते हुए, जैसे अगर कोई है ना फिल्म का गाना बनाता है हरे राम, तो इस तरह से मनोरंजन करते हुए भी अगर वो हरे कृष्ण कह रहे हैं तो भी, और अगर वो किसी की उपेक्षा करते हुए कि कोई तिलक लगा के घूम रहा था, बोले सजो डी पाड़ भी खड़े ना सजो बेन के भी है ना सजो डी कितना वजाय वजाय बस जो कुछ कम आए को सुबह खराब था, अगर कोई मजाक उड़ाते हुए निंदा करते हुए अगर मनोरंजन करते हुए या संकेत देते हुए भी अगर कोई नाम लेता है तो भी उसके अपराध नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक के मार्केट में यदि खरीद करेंगे और उसको कोई ठेले वाला खड़ा होगा उसको बोलेंगे ना ये हरी मिर्ची कितने की है, और उस समय भी अगर उसका उसकी मृत्यु हो जाएगी उसके मुख से क्या निकला है, हरी निकला है ना, तो वो मिर्ची को नहीं देखेंगे, बोलेंगे हरी, जैसे हरी निकला तो हरी के पार्षद आएंगे उसको लेने के। बोला अच्छा फिर लेके किस, इनको तो नहीं लेके आना, लेके किसको आना है, तब बताते हैं ध्यान से, वे कहते हैं जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता ना उसको लेके आया करो, पहले देखा करो वो भगवान का नाम लेता है अगर, हरे कृष्णा हरे 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 राम राम, जिसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता ना उसको लेके आया करो। चेतस्य न स्मरति तत्चरणारविंदम, जो अपने दिल में भगवान को भगवान के चरण कमल को स्मरण नहीं करता ना उसको लेके आया करो। कृष्णाय यो नमति यशिर एकदापि, जिसका सर भगवान के चरणों में नहीं झुकता ना उसको लेकर आया करो। और ऐसे कहते तानान यह असत करो, जो भगवान कृष्ण के लिए सेवा नहीं करते, भगवान का नाम नहीं जप करते, भगवान की भक्ति नहीं करते उनको लेके आया करो, हे मेरे सेवकों। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनके पास कभी भी मत जाना। तो यहाँ से बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं, उसके उपरांत बताते हैं कि अजामिल जो है वो पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा मतलब भक्त था, और वो भक्त जो है एक दिन जंगल में गया, बहुत ठंडी पड़ रही थी, ठंडी के समय उसका जो शरीर था वो बहुत कांप रहा था। एक साधुओं की टोली वहां से आई, उसमें एक स्त्री भी थी, तो देखा कि वो ठंड के मारे, क्योंकि बर्फ का पहाड़ था तो ठंड के मारे वो बहुत है ना मरने वाला था, तो साधुओं ने कहा इसको शरीर की गर्मी की आवश्यकता है। तो एक कन्या थी उसको बोला कि इसको अगर गर्मी नहीं मिली तो मर जाएगी, तो उसने जैसे ही उसको स्पर्श किया तो अजामिल ने उसको श्राप दिया, मतलब पहले जन्म में इसको श्राप दिया कि आप जो है वो वेश्या बन जाओ, मैं तपस्वी हूँ ब्रह्मचारी हूँ, आपने मुझे स्पर्श कैसे किया। तो उसने कहा तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मैंने अपने सतीत्व को दाव पे लगाया और आपने मुझे वेश्या होने का श्राप दिया है, वेश्या तो बनूंगी पर पत्नी तुम्हारी बनूंगी। फिर नेक्स्ट बर्थ में जो है वो वेश्या बनती है, और राजा मिल के साथ उसका निवाया होता है। उसके उपरांत यहाँ पर बहुत ही सुंदर दक्ष जो है वो तपस्या करता है और उसके 10,000 पुत्र उत्पन्न होते हैं। नारद मुनि उनको ब्रह्मचारी बना देता है। फिर वापस से दक्ष प्रजापति जो है वो 1,000 पुत्रों को उत्पन्न करता है। नारद मुनि उनको बोलता है तुम जो बड़े भाई हैं वो गए तपस्या करने के लिए और तुम विवाह करोगे जब तुम भी ब्रह्मचारी बन जाओ। और फिर दक्ष प्रजापति जो है वो बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। ब्रह्मा जी को बोलते हैं क्या करूं। बोला जितने भी बेटे पैदा करोगे ना नारद मुनि तो उनको ब्रह्मचारी बना देगा, तो तुम क्या करो बेटियां पैदा करो। अगर नारद मुनि आएगा उपदेश करने के लिए तो बदनाम हो जाएगा। फिर दक्ष प्रजापति बेटियां उत्पन्न करता है और अलग अलग ऋषियों के साथ 60 पुत्रियों को उनका विवाह करवाता है। उसके बाद इंद्र को जब किसी को भी जब राज्य प्राप्त होता है तो उसको अभिमान हो जाता है। तो इंद्र को बहुत ज्यादा अभिमान हो गया अपने राज्य का, क्योंकि सारे देवी देवताओं का वो राजा था। एक बार क्या हुआ कि वो जब आ रहा उनके पास, जब महाराजा इंद्र जो है वो अपनी सभा में बैठे हुए थे, गुरु बृहस्पति वहां पर आए। इंद्र ने उनको प्रणाम ही नहीं किया, उनका आदर सत्कार नहीं किया। गुरु बृहस्पति बहुत ज्यादा दुखी हुए कि शिष्य है मेरा और मेरा सम्मान भी नहीं किया, लेकिन कुछ बोला नहीं, वहां से तो चले गए। लेकिन गुरु के रूठने से बोला इधर आना ही नहीं चाहिए, जहां पर हमारा सम्मान नहीं वहां पर जाकर क्या फायदा, और कम अज कम संतों को जो भक्त है ना उनको और कुछ ना दे सको तो चलेगा, लेकिन सम्मान अवश्य करना चाहिए, उनको बिठाना चाहिए, अच्छी जगह पर बिठाओ, उनको पानी का पूछो, उनको कुछ प्रसाद, उनको कुछ नहीं चाहिए, ना आपका धन चाहिए ना आपका कोई यश चाहिए। एक शुद्ध भक्त जो आए उनके घर, जिनके घर में संत नहीं आते ना, जहाँ पर शास्त्रों में तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिनके घर में संत नहीं आते, जिनके घर में भगवान के भक्तों की सेवा नहीं होती है, उनका आदर नहीं होता, वो घर कब्रिस्तान होते हैं। हम लोग जाते हैं हमें पता होता है कि हमारे यहाँ पर तो इतना ज्यादा कराची में क्योंकि दूर दूर है, लेकिन वहां पर हम जाते हैं हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी है ना, मतलब बड़े संत जाते होंगे उनका कितना करते होंगे, लेकिन हमको तो शर्म आती है कि हमारे लिए इतना करते हैं कि भाई संत आया ना हमारे घर में। आप रात रात हो जाती है, अभी एकादशी थी, रात हो गई थी, रात भर हमको जागना था, हमारी फ्लाइट ट्रेन थी 4 बजे, मतलब 5 मिनट ली थी, 5 मिनट स्नान लेकर रात रात तक जागते हैं कि भाई चरण घुमा के जाए, उनको लगता है कितना भगवान, देखो इतना कोई करता है तो भगवान भी है ना छोड़ता नहीं, भगवान उनके ऊपर कितनी कृपा करता है। तो हमको कम अज कम ये देखना चाहिए कोई संत है कोई भक्त है, हम नहीं सेवा करते हैं, कम अज कम उनकी सेवा करके ही भगवान खुश हो जाएंगे। तो गुरु का तो अनादर किया, और अनादर करने के बाद क्या होता है, जब आप किसी वैष्णव का अनादर करते हो, अगर आप भगवान का अनादर करते हो ना, भगवान आपसे रूठ जाए ना तो चिंता मत करना, भगवान रूठ गया ना तो आपका आपके साथ अगर कोई भक्त है कोई संत है वो भगवान को मना के दे देगा, भगवान को प्रार्थना करेगा आपके लिए तो भगवान मान जाएंगे। लेकिन अगर कोई वैष्णव रूठ जाए ना तो भगवान भी उसको नहीं मना सकते, इसलिए वैष्णव का हमेशा आदर करना चाहिए, जो भगवान के भक्त हैं उनका हमेशा आदर करना चाहिए। अब तो गुरु बृहस्पति रूठ गए, इंद्र ने हम हर जगह पे ढूंढ लिया, गुरु दिख ही नहीं रहे थे, इंद्र का पूरा यश चला गया, उसका पूरा यश, उसका राज्य समाप्त हो गया, इंद्र जो कि देवताओं का राजा था दर दर का भिखारी बन गया। वैष्णव अगर रूठ जाते हैं तो हमारा यश हमारा सम्मान हमारा धन सब समाप्त हो जाता है, पता नहीं चलता कैसे हो गया। तो इंद्र जो है वो बहुत परेशान हो गया, ब्रह्मा जी के पास गया, बोला गुरु मुझसे अपराध हो गया, गुरु का सम्मान नहीं कर पाया, अब क्या करूं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप क्योंकि गुरु नहीं है ना, जिसका गुरु नहीं होता उसको कुछ मिलेगा नहीं, गुरु बिना गत नहीं, गुरु के बगैर तो आपको ना मान मिलेगा ना सम्मान मिलेगा ना पुनः आपका स्वर्ग मिलेगा, गुरु तो जरूरी है। बोला गुरु तो मैं ढूंढ रहा हूँ मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ। बोला वो तो बृहस्पति है अपनी इच्छा से आएंगे, जब तक वो नहीं है तब तक कोई अल्टरनेट गुरु बना लो, कोई उसकी जगह पे किसी को बिठा दो कम से कम, गुरु बन के तो बैठ जाए। बोला मुझे पता नहीं मैं किसको बनाऊं गुरु इस संसार में, और कौन है जो गुरु बृहस्पति। बोला गुरु बृहस्पति की जगह लेने वाला नहीं, लेकिन इस समय जो है जो शास्त्र को समझता है, शास्त्र को मानता है और शास्त्र के अनुसार जीता है, उसको आप गुरु जो है बना सकते हो। मतलब जो शास्त्रों को एज इट इज जिस तरह से परंपरा से आए हैं उस तरह से समझता है, और जैसा शास्त्र में या उनके गुरु महाराज का जैसा आदेश है वैसे अगर जीता है। गुरु के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जैसा उसने अपने गुरु से सुना है वैसा ही बताता है, जो उसके जो वो बताता है वैसा ही वो जीता है, तो वो गुरु बनने के योग्य है। वो जो भगवान को भगवान की भक्ति करता है और स्वयं को भगवान का दास समझता है वो गुरु बनने के योग्य है। जो परंपरा से आता है वो गुरु बनने के योग्य है। तो गुरु की बहुत सारी इम्पोर्टेंस बताई, और फिर उसने कहा कि इंद्र ने बोला आप ही बताइए कि किसको मैं गुरु बनाऊं। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपका भाई है त्विष्टा, और त्विष्टा का बेटा है विश्वरूप। उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत ही शास्त्रों को जानता है, तो तुम जब तक तुम्हारा गुरु नहीं है तो तब तक तुम विश्वरूप को गुरु बनाओ। इंद्र फौरन गए विश्वरूप। विश्वरूप जो थे कश्यप महाराज के दूसरे पुत्र हैं त्विष्टा। कश्यप के सारे पुत्र जो हैं वो देवता हैं, तो इंद्र और त्विष्टा आपस में क्या हुए? भाई हुए ना। तो अपने भातीजे के पास जाता है कि तुम मेरे गुरु बनो, मुझे है ना आदेश है। तब वो बोलता है नहीं नहीं मैं, आप तो बड़े हो, मैं आपका गुरु कैसे बन सकता। बोला मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरे गुरु बन जाइए, मैं निवेदन कर रहा हूँ। तो विश्वरूप स्वीकार करता। विश्वरूप के चार सर होते हैं, तीन सर होते हैं, और विश्वरूप की जो माता है वो दैत्यों की, मतलब जो माता का खानदान है ना वो दैत्यों की ओर से होता है और पिता देवता होते हैं। तो अब ननिहाल जो है वो दैत्य होते हैं, असुर होते हैं, तो नहीं ननिहाल से भी बहुत ज्यादा प्रेम होता है, और अपने जो इंद्र वगैरह हैं वो उनके उनके चाचा हैं तो उनसे भी प्रेम होता है। अभी इंद्र बोलता है कि मेरा तो सारा राज्य खत्म हो गया, आप कुछ नहीं है मेरे पास, आप ही मुझे बताओ क्या क्या करना है। तो बहुत ही सुंदर रीति से इंद्र को नारायण कवच सिखाते हैं और बोलते हैं ये नारायण कवच इस तरह से आचमन करना है, इस तरह से, मतलब बहुत ही विधि से बताते हैं कि किस तरह से नारायण कवच अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे शत्रुओं को हम जीत सकते हैं। तो नारायण कवच सिखाने के बाद इंद्र जो है वो महाराज बलि के साथ युद्ध करता है, असुरों के साथ, राज्यों से वापस मिल जाता है। इंद्र बोलता है विश्वरूप को कि अब तो राज्य प्राप्त हो गया ना, अब ऐसा करते हैं आप मेरे लिए यज्ञ करो ताकि देवताओं की शक्ति और भी बढ़े। तो विश्वरूप यज्ञ करता है, और उसको क्योंकि प्रेम था असुरों के साथ भी और देवताओं के साथ भी, तो एक आहुति देता है देवताओं के लिए और दूसरे हाथ से आहुति देता है, क्योंकि सर भी तो बड़ा यज्ञ कर, दूसरे साइड से आहुति देता है असुरों के लिए, और एक साइड से इंद्र आए स्वाहा, उधर से बलि महाराज आए स्वाहा। तो इस तरह से इंद्र ने जब देखा अरे गुरु मेरा, दक्षिणा मैं देता हूँ, और जो है ना आहुति किसके लिए दे रहा है? राक्षसों के लिए दे रहा है। तो इंद्र ने उसको बहुत ज्यादा क्रोध आया, इंद्र ने वज्र निकाला और उसकी गर्दन काट ली। वज्र नहीं था, इंद्र ने तलवार निकाला और उसकी गर्दन काट ली। और अब तो जैसे उसकी गर्दन काटी है उसके पिता त्विष्टा को पता चला मेरे से मेरा बेटा लेके गया कि मैं इसको गुरु बनाऊंगा, और उसको मार डाला, उसकी गर्दन काट ली। इंद्र अपने आप को समझता क्या है, उसने त्विष्टा ने इतना बड़ा यज्ञ किया, त्विष्टा वहां यज्ञ कर रहा है, लेकिन इंद्र ने जैसे ही गुरु हत्या की तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, ब्रह्म हत्या के पाप के कारण वापस उसका सब कुछ छिन गया, तेज खत्म हो गया, उसका स्वर्ग छिन गया, सब कुछ उसका नाश हो गया। तभी इंद्र परेशान हो, इतने समय तक ब्रह्म हत्या का पाप लेकर घूम रहा था इंद्र परेशान, सारे देवी देवता परेशान, राज्य नहीं है और देवी देवता परेशान तो संसार परेशान। तभी चार लोगों में अपने इंद्र ने अपने ब्रह्म हत्या के पाप को डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला पाप स्त्रियों ने लिया, बोला हम आपके पाप को लेने के लिए तैयार हैं। स्त्रियां करुणा की मूर्ति हैं, वो देख रही हैं कि सबका सबको कष्ट हो रहा है, संसार पूरा विचलित है, सारे देवता विचलित है, तो स्त्रियों ने कहा कि एक हिस्सा हम लेने के लिए तैयार है। तो इसके कारण स्त्रियों को हर महीने में रजस वाला लेना पड़ता है। तो उसके अतिरिक्त इंद्र का क्योंकि पाप लिया है, इसलिए उनको एक वरदान प्राप्त हुआ है कि अगर भगवान को भी संसार में आना पड़ता है तो स्त्रियों की सहायता लेनी पड़ती है ना। स्त्री को माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जितने भी संत हैं, जितने भी ऋषि हैं, जितने भी भक्त हैं, वो सब स्त्रियों की कोख से पैदा होते हैं। तो इनको इतना बड़ा सम्मान है, माता का इतना बड़ा सम्मान है कि अगर कोई माता की सेवा करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। माता पिता की अगर कोई सेवा करता है तो स्त्रियों को इतना सम्मान दिया। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वो पृथ्वी ने लिया। पृथ्वी भी माँ है और वो भी अपने संतान को दुखी नहीं देख सकती, तो पृथ्वी को एक हिस्सा दिया गया। मतलब चार हिस्से किए गए ना, तो एक हिस्सा पृथ्वी को दिया गया, जिसके कारण पृथ्वी कहीं कहीं जगह से बंजर रहती है। और उसको वरदान क्या मिला कि जब भी पृथ्वी के बीच में कोई खड्डे खुम्बे सब कुछ बन जाएंगे तो धीरे 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 पृथ्वी खुद ही बैलेंस होती जाएगी। उसके बाद एक हिस्सा जो है वो वृक्षों ने लिया। वृक्षों को ये अपराध मिला कि आपके वृक्षों के अंदर से गोंद निकलेगा, खोर जो निकलता है ना वो ब्रह्म हत्या का पाप होता है, उसके अंदर पाप होता है, नहीं खाना चाहिए। और उसको वृक्षों को क्या वरदान मिला कि आपकी जो टहनी अगर टूट जाएगी या कहीं से जो भी फूल टूट जाएंगे फल टूट जाएंगे तो फिर वापस से उगना शुरू होंगे। और उसके बाद चौथा जो अपराध है वो पानी ने लिया, जल ने लिया। जल क्या होता है, जल के अंदर बुलबुले होते हैं जो के ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इसलिए किसी संत को हम लोग पानी देते हैं ना तो वो क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, बुलबुलों को हटाते हैं या ऊपर से गिरा के फिर पीते हैं। मैं हमेशा सर्वम प्रभु को देखती हूँ, वो हमेशा कोई झाग जैसा होता है ना वो हटा के फिर पीते हैं। और पानी को वरदान क्या दिया कि जिसके अंदर भी डालोगे ना वो उसी के हिसाब से बिकेगा। जैसे अगर दूध है, एक पाव दूध के अंदर एक पाव पानी डालो आधा किलो बनेगा, तो आधा किलो दूध की कीमत से है ना हम बेच सकेंगे। दाल अगर 10 जनों की बनी है और पता चला 10 लोग और आ गए, उसके अंदर एक किलो पानी डाल दो तो दाल का ही दाल ही कहलाएगा। तो इस तरह से चार चीजों को पाप दे दिया और इंद्र इस पाप से तो छूट गया, लेकिन तुष्टा जो यज्ञ कर रहा था उस यज्ञ से एक बहुत बड़ा असुर उत्पन्न हुआ। उस असुर का नाम था वृत्तासुर। वृत्तासुर इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि सारे देवी देवता जब उसके साथ युद्ध कर रहे थे तो जो भी अस्त्र चलाते थे वो उसका शरीर इतना विशाल होता था कि इतनी बड़ी गदा भी अगर चलाते थे तो उसके पास आकर उसके शरीर के हिसाब से वो इतनी छोटी, जैसे नहीं कीचेन वाली गदा होती इतनी छोटी हो जाती, वो इसे तोड़ के फेंक देता था। तभी सारे इंद्र और सब देवता परेशान हो गए कि इसको हम कौन से हथियार से मारें, कौन सा हथियार इस पे चलेगा। तो सब लोग भगवान के पास गए। भगवान ने कहा रोज रोज तुम लोगों की खुशामत नहीं करूंगा, लोग मुझे क्या बोलेंगे, जाओ खुद ही कुछ करो। तो बोला बताओ तो सही कम से कम करें क्या। बोला दधी ची ऋषि ना उसकी अस्थियां जो है उनकी हड्डियां लेके जाओ, उसके वजह तो वृत्तासुर मरेगा। बोला दधी ची ऋषि हड्डियां क्यों देगा। बोला जाओ, वो भगवान का भक्त है, भक्त जो है वो कष्ट में अपने जान देने के लिए भी तैयार होते हैं, उनको बोलना भगवान ने बोला। सारे देवता जाते हैं दधी ची ऋषि को, अश्विनी कुमारों को आगे लेके जाते हैं। बोला ये वृत्तासुर के कारण हम सब परेशान हैं, आप ऐसा कीजिए अपनी हड्डियां दे दीजिए। बोला वहां मरने का बोल रहे हो, मरूंगा तो हड्डियां दूंगा, कोई अपनी जान तो सबको प्यारी होती है। तो बोला हमको तो भगवान ने भेजा है, एक आपकी जान जाएगी, सारे देवी देवताओं की जान बच जाएगी। तभी उसने कहा, वो समाधि में बैठते हैं, गौ अपने शरीर पर कुछ लगा के फिर गऊ से के चाटने से उसके शरीर की जो मांस है वो समाप्त होता है, हड्डियों से वृत्तासुर वज्र बनता है और फिर वृत्तासुर के साथ युद्ध करने के लिए इंद्र जाता है। बहुत ही सुंदर युद्ध होता है। वृत्तासुर को मतलब बहुत देर तक है ना इंद्र का और वृत्तासुर का युद्ध चलता है। एक बार क्या होता है वज्र के साथ ही वृत्तासुर है ना इंद्र को खा जाता है और अंदर बैठा हुआ इंद्र और क्योंकि इतना बड़ा होता है उसका मुंह इतना बड़ा होता है कि एलिफेंट जो है ना इंद्र का एरावत के साथ ही उसके अंदर चला जाता है और बैठ जाता है। सारे देवी देवता परेशान कि वज्र लिया इतनी मेहनत से बनाया और इंद्र भी गया अंदर, लेकिन इंद्र ना जोर जोर से पेट के अंदर से ही खोल खोल के बाहर आता है और बाहर जैसे ही आता है वृत्तासुर उसको ऐसे जोर से मारता है कि इंद्र का वज्र ही गिर जाता है। फिर इंद्र को बोलता है कि इंद्र उठाओ अपना वज्र, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, उठाओ उठाओ मुझे मारो। और फिर बहुत ही ना इंद्र को बोलता है कि ये देखो मैं अगर मर भी जाऊंगा ना तो भी मैं जीत जाऊंगा और अगर तुम हार भी जाओ तुम अगर जीत भी जाओगे ना तो भी तुम हार जाओगे। तो इंद्र बोलता है ऐसा क्यों? बोला अंत समय में जब भगवान याद आ जाते हैं ना तुम अगर मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा, मैं अगर मतलब तुम अगर जीत जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा, मैं मर जाऊंगा तो मुझे भगवान का वैकुंठ मिलेगा, तुम इसलिए मारो मुझे, उठाओ अपना वज्र। और उस समय वृत्तासुर बहुत ही सुंदर प्रार्थना करता है भगवान से, बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हुए वृत्तासुर कहता है अहम हरे तव पादे कमूला नासानु नासा भवितास्मि भूया मानस्मरेता सुपीत गणेस्ते गृह्णन्ति वाक् कर्म कायोतु काया। वो बोलता आम हरे तव पादे कमूलम, मुझे तो ये आशीर्वाद दो कि कब ऐसा जन्म मुझे प्राप्त हो कि मैं आपके चरणों की सेवा करूं, मैं आपको हमेशा स्मरण करता रहूं। और फिर बोलते भगवान बोलते हैं वृत्तासुर की प्रार्थना सुनकर कि मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो, क्या चाहिए वृत्तासुर? तब वे कहते हैं नाना कपृष्टम न चित्पारमेष्टम न सार्वभौम न सत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा सामंजसात्वं विरहयकांक्षी। मुझे ना ही इंद्र का राज्य चाहिए, ना ही मुझे संसार का कोई, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना ब्राह्मण लोक चाहिए, ना योग सिद्धि चाहिए, ना ही कुछ और चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे अगर देना ही है तो विरहयकांक्षी, मुझे ऐसा विरह का भाव दो कि आपके बगैर तड़पता रहूं, मुझे ऐसा लगे कि मैं भगवान से दूर हूं तो मैं तड़पता रहूं, वो विरह का भाव दो कि मैं मुझे हर क्षण ये याद रहे, भले मैं कहीं पर भी रहूं संसार में, मैं मुझे भले नरक में भेजो, स्वर्ग में भेजो, धरती में भेजो, लेकिन मुझे हर टाइम पर ये रहे मैं भगवान से दूर हूं और रोता रहूं, आपको याद करते करते विरहयकांक्षी। तो बोला अच्छा तुम मुझसे विरह का भाव चाहिए, मुझसे दूरी का जो जुदाई का भाव है वो चाहिए, तो कैसा भाव हो? तब वो बहुत सुंदर कहते अजात पक्षा इवा मातरम खगा। बोला जैसे एक छोटा सा पंछी का बच्चा होता है, उसके पंख नहीं निकले होते हैं तो उसकी माँ से दूर होता है तो कितना रो रहा होता है, मैं भी वैसे आपके बगैर रोना चाहता हूँ। बोला अच्छा वो तो भय का भजन होता है, माँ दूर गई होती तो उसको डर लग रहा होता है कि कहीं मेरी माँ को कोई पकड़ न ले, पता नहीं मेरी माँ वापस आएगी नहीं आएगी, वो भय में होता है इसलिए माँ को याद कर रहा होता है। और तो तुमको भय का भजन चाहिए? बोला नहीं नहीं वो वाला नहीं चाहिए। स्तन्य व्यथावत्स तरुक्षुदार्थ। बोला जब एक गाऊ का छोटा बच्चा होता है ना, जब उसकी मैया जाती है ना जंगल में वन में, तो वो गऊ का बच्चा किसी और का दूध नहीं पीता, वो ढूंढता रहता है कब मेरी माँ आएगी कब मेरी माँ आएगी, तो उसी रास्ते को देख रहा होता है। मैं भी उसी तरह से बस आपको याद करता रहूं। बोला वृत्तासुर ये तो भूख का भजन है, वो माँ आती है दूध पिलाती है फिर वो अपने खेल में लगा रहता है, उसके साथ थोड़ी ना बैठता है, बच्चा तो ऐसे घुलता कुलता रहता है। तो ये तो भूख का भजन है, भूख खत्म तो भजन खत्म, ऐसा भजन चाहिए। फिर बोलते नहीं ऐसा नहीं चाहिए, कहते हैं प्रियं प्रियेव युषित विशुरा मानोरविंदाक्ष देदृक्षते काम। कोई पतिव्रता स्त्री हो, उसका पति यदि परदेश चला जाता है और उसको यहाँ पर सब कष्ट देते हैं, सब धुतकारते हैं, वो रोती है और हर समय अपने पति को याद करती है कि प्राणनाथ आप कब आओगे, कब मुझे आनंद प्रदान करोगे, कब मैं आपके दर्शन करूंगी। वो किस तरह से एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को स्मरण करती है, बस उसी तरह से मैं भी आपको याद करती रहूं। और जब वो प्राप्त करती है तो उसे और कुछ याद नहीं रहता, बस उसे वही याद रहता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा आधार मुझे प्राप्त हो गया है, बस मैं भी तुम्हें उसी तरह से याद करना चाहता हूँ। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर ये जो राक्षस है उसने जो भगवान की स्तुति की है चार श्लोकों में, इसको श्रीमद् भागवतम में चतुर्श्लोक की भागवत कहा गया है। तो जब भी परीक्षित महाराज ने ये सुना तब बोलते हैं कि भगवान को अंत समय में याद करना कितना मुश्किल है, जो अच्छे लोग होते हैं उनको भी भगवान याद नहीं आते, ये तो राक्षस था, राक्षस को अंत समय में भगवान कैसे याद आ गए। तब बताते हैं कि ये कोई राक्षस असल में क्या था, ये राक्षस पहले राजा चित्रकेतु था। चित्रकेतु राजा को संतान नहीं थी, नारद एक बार उनके यहाँ पर आए तो नारद को रो के कहा मुझे संतान चाहिए, उनकी हजारों रानियां थी लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। नारद मुनि ने कहा संतान तो तुम्हारे भाग्य में है, अंगिरा ऋषि और नारद मुनि आए थे, तो अंगिरा ऋषि ने कहा लेकिन ये संतान तुम्हें सुख नहीं देगी, ये सुख नहीं देगी, ये तो तुम्हें दुख देगी। तो बोला भले कुछ भी हो, कम से कम संतान तो होगी ना, भले आप मुझे फिर भी संतान होने का आशीर्वाद देके जाइए। तो बोला ठीक है, उसका नाम रखना हर्ष शोक। हर्ष मतलब पैदा होने के टाइम पर तुमको खुशी होगी, कुछ दिनों के बाद दुख होगा। उसने बोला मैं इतना बड़ा राजा हूँ, अब जाहिर सी बात है रेशन जबार बिगड़ा नहीं, तो अगर थोड़ी बहुत बिगड़ा होगा, कुछ अगर गलत हरकत करेगा तो ठीक है ना, लेकिन फिर बेटा तो होगा ना मेरा। उसने बोला ठीक है। तो कुछ समय उसने एक ना यज्ञ करवाया और यज्ञ से जो खीर निकली बोला अपनी एक पत्नी को खिला दो, बहुत सारी पत्नियां थी, जो पत्नी उसको ज्यादा अच्छी लगती थी उसको खिलाया और कुछ समय के बाद वो गर्भवती हो गई। अब सारा समय राजा चित्रकेतु उसी पत्नी के साथ रहने लगे क्योंकि इतना उसको मोह था अपने पुत्र से, 9 महीने के बाद पुत्र उत्पन्न हुआ। अब तो दूसरी रानियों को याद ही नहीं करता था कि इसके अतिरिक्त भी मेरी कोई रानियां हैं, लेकिन सब रानियां जेलसी करने लगी, इतना ज्यादा सबके अंदर जलन होने लगी कि सारा टाइम राजा इनके साथ ही रहता है। समय बीता, एक साल के बाद ना बर्थडे होती, सालगिरह हो रही थी, तो रानियों ने क्या कहा कि हम इनके लिए बहुत सुंदर खीर बनाते हैं, खीर में विष पिला के बच्चे को खिला दिया और बच्चे की मृत्यु हो गई। राजा बहुत ज्यादा दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ मैं कितना प्यार करता हूँ, ये मुझे छोड़ के थोड़ी जा सकता है, रो रहा है। तभी उस समय वापस से नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि बोलते हैं क्या चाहिए। बोला मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। बोले जिसकी मृत्यु हो जाती है वापस थोड़ी आता है। बोला जब आप देवर्षि हो ना, आप थोड़ी देर के लिए खाली मुझे इसको जिंदा करके दो, मैं इससे बात करना चाहता हूँ, ऐसे कैसे चला गया मुझे बताया नहीं, आप इसे वापस जिंदा करके दो। नारद मुनि कहते हैं ऐसे नहीं मानेगा। तभी नारद मुनि को उसको बोलते हैं कि ठीक है आप बैठो, मैं उसको जीवित करता हूँ। नारद मुनि उस जो संतान है ना, वो 1 साल का बच्चा मरा हुआ है, उसको बोलते हैं उठो हर्षशोक पुत्र, देखो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिता की क्या हालत हो गई है, उठ जाओ। जैसे ही उसको बोलते हैं वो जीव आत्मा उठती है और बोलती है देखो तुम्हारा पिता, नारद मुनि कहते हैं देखो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बगैर कितना दुखी है। तब वे कहते हैं कौन पिता, किसका पुत्र, ना तो मैं यहाँ किसी का पुत्र हूँ ना ही कोई मेरा पिता है, यूं तो जन्मों से मेरा जन्म होता रहा है, कई कई बार तो मैं इसका पिता बना हूँ और कई कई बार तो मैं इसका दुश्मन बना हूँ, और कभी तो ऐसा होता है कि हम इस संसार में किसी को लूट लेते हैं, किसी का धन हरण कर लेते हैं, किसी को बच्चा बन के आता है वो हमारा सारा धन ले लेता है, हमें तकलीफ देता है। तो ये तो केवल हिसाब किताब होता है। और बताते हैं कि समुद्र के तट पर रेत के उतने कण नहीं है जितने के हमें सगे संबंधी हो गए हैं, और वो सब सिर्फ हिसाब किताब पूरा करने के लिए। संसार में जीव आत्मा का कोई संबंधी नहीं है, संबंध अगर किसी के साथ है तो वो भगवान के साथ है बस, और किसी के साथ। तो इतना सुंदर उपदेश वो जीव आत्मा देती है कि हमारा किसी के साथ कोई नाता है ही नहीं। पिता पुत्र माता पिता जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ का हमारा जो कार्मिक अकाउंट है उसको खत्म करने के लिए। किसी को हमने दुख दिए हैं तो वो दुख देने के लिए आता है, किसी को सुख दिए हैं तो वो सुख देने के लिए आता है, और इसी तरह से ये जन्म मरण का चक्कर बना रहता है। तब वो जब ऐसा सुनते हैं तब उनको वैराग्य होता है और बोलता है मैं तो आया था एक साल के लिए, मेरा ये जो इनके साथ हिसाब किताब था। और बताता है पहले जमाने में ये सब की मकोड़ियां थी, ये जो 10,000 जो रानियां हैं, और मैंने इनको गर्म पानी डाल के मार डाला था, आज इन्होंने मुझे जहर पिला के मार दिया। माँ का बच्चा है वो, और शत्रुता निभाने के लिए देखो सिर्फ है ना मार दिया था तो वो माँ बननी और अब उसको मार रही है। तो बोला इसी तरह से सब लोग आते हैं बदला चुकाने के लिए, हिसाब किताब पूरा करने के लिए, कोई किसी का कोई संबंधी है ही नहीं। जब चित्रकेतु महाराज ने ये सब सुना तब उसी समय उसको वैराग्य उत्पन्न हुआ, अपने पुत्र को दाह संस्कार करने के लिए चला गया तपस्या करने के लिए, और इतना वैराग्य कि किसी के अंदर कोई आसक्ति नहीं। याद आ गया हमने कितनी दफा सुना है लेकिन अभी तक हमारे मन में वैराग्य नहीं, अभी भी ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, मन के अंदर बस मेरा मेरा लगा है, कुछ नहीं है हमारा, कोई भी हमारा नहीं है। हमारा संबंध सिर्फ भगवान के साथ है और किसी के साथ संबंध है ही नहीं। तो फिर चित्रकेतु महाराज जो है वो तपस्या करने के लिए जाते हैं और उनको गंधर्व योनि मिलती है। आखिर बाद में क्या होता है कि उनको गंधर्व एक बहुत सुंदर विमान मिलता है, विमान में चढ़कर वो कहीं पर भी घूमते फिरते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पे जाते हैं, वहां पर भोलेनाथ जो है वो कथा कर रहे होते हैं, अपनी गोद में पार्वती को बिठाए बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। उनको देखकर चित्रकेतु महाराज कहते हैं अरे हे महादेव तुमको शिष्टाचार पता नहीं है, भागवत कथा करते हो पत्नी को गोद में बिठाया, कोई बेडरूम है क्या तुम्हारा, इस तरह से तो बेडरूम में जाके बैठना चाहिए, कथा के टाइम पर तो एक तरीका होना चाहिए बैठने का। तब शिव ने तो उनको कुछ नहीं कहा, उनको पता था कि ये तो भगवान का भक्त मजाक कर रहा है। तो शिव जी तो हंस रहे थे लेकिन पार्वती जी को इतना गुस्सा आया इतना क्रोध आया, बोला इस ये बड़ी सभा में वेद व्यास जी बैठे हुए हैं, ब्रह्मा बैठे हुए, नारद बैठे हुए, वो कथा सुन रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये आया बड़ा हमको सिखाने के लिए कि हमको किस तरह से बैठना है किस तरह से नहीं बैठना है, बस इस शिष्टाचार सिखाने के लिए यही बचा है। ये तो राक्षस है देवताओं की महफिल में, इसको आने का अधिकार नहीं। उस टाइम पर पार्वती महारानी क्रोधित होकर इसको राक्षस बनने का श्राप देती है, इसलिए वो राक्षस। तभी जब वो उसको श्राप देती है पार्वती महारानी तब वो चरणों पे गिर जाते हैं और बोलते मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा, मैं आपने अगर मैं मतलब मैं आपको अपने तो मुझे जो श्राप दिया है उसको तोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, मुझे आपका श्राप का श्रोध धैर्य है, लेकिन मेरा मन ऐसा नहीं था कि मैं आपको दुखी करना नहीं चाहता था, मेरी बातों से आपको दुख पहुंचा उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, बाकी आपने मुझे जो श्राप दिया है उसे मैं स्वीकार करूंगा। तभी शिव जी है ना पार्वती को समझाते, देखो भगवान के भक्त वो उनके अंदर भी पावर था, वो भी आपको श्राप दे सकते थे लेकिन वो आपके श्राप को स्वीकार करके जा रहे हैं। वो वृत्तासुर जो है इसलिए मतलब चित्रकेतु जो है वो इसलिए वृत्तासुर बन गया, लेकिन क्योंकि उनके मन में अभी भी भगवान की शुद्ध भक्ति थी इसलिए वो आज भगवान को याद करते करते भगवान के धाम में पहुंचे। तो यहाँ पर छठा स्कंद समाप्त होता है, सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज की कथा आती है। प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज कि हे शुकदेव गोस्वामी ये भगवान जो है ना वो पक्षपात करते हैं, राक्षसों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, उनको हमेशा मारा जाता है, उनके साथ बुरा होता है, और जो भगवान इंद्र देवता वेवता होते हैं ना उनकी साइड लेते हैं। तभी भगवान कहते नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, देखो आपको मैं एक है ना ऐसा इतिहास बताता हूँ कि राक्षसों की भी अगर भगवान की भक्ति कोई राक्षस भी करता तो भगवान उनकी भी रक्षा करता है। फिर हिरण्यकश्यप के बारे में बताते कि हिरण्यकश्यप जय और विजय जो हमने कल बताया था उनका हिरण्याक्ष पुत्र एक हिरण्याक्ष बना था और दूसरा भाई हिरण्यकश्यप। तो वो जब जैसे हिरण्याक्ष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी भाभी और सब रो रहे होते हैं, बहुत सारा उनको देता है कि जिसने जन्म लिया उसको तो मरना है, और उपदेश देने के बाद सोचता है कि मेरे भाई की तो मृत्यु हो गई लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मुझे मरना ना पड़े। वो जाते हैं तपस्या करने के लिए, और तपस्या करने के लिए जब वो जाते हैं तभी उसके पीछे इंद्र को पता चल जाता है कि ये तपस्या करने के लिए गया है और उसकी पत्नी जो है वो गर्भवती है, इसलिए इंद्र उसकी पत्नी को हिरण्यकश्यप की पत्नी गयादु उसको लेकर जाना वो सोचता है कि मैं इसका पुत्र जब पैदा होगा उसको मार डालूंगा। लेकिन रास्ते में नारद मुनि मिल जाते हैं, बोलते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जिसका भी जन्म नहीं हुआ है उसके बारे में ये कैसे सोच सकते हो कि ये भक्त बनेगा या अपराधी बनेगा। तो बोला राक्षस का बेटा तो राक्षस ही बनेगा ना, इसलिए मैं इसको मारने जाता हूं। बोला नहीं, ये राक्षस नहीं बनेगा, ये भगवान का शुद्ध भक्त बनेगा। तो हिरण्यकश्यप की पत्नी को वो नारद मुनि अपने साथ अपनी कुटिया में लेके जाते हैं और वहां पर हिरण्यकश्यप तपस्या करता है। 36,500 वर्ष तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, उनसे वरदान लेता है, ना दिन में मरू ना रात में मरू ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू ना देवता से मरू ना मानव से मरू ना ही मैं मनुष्य से मरू ना ही मनुष्य से मरू ना ही जानवर से मरू और ना मतलब घर के अंदर मरू ना बाहर मरू। ब्रह्मा जी को कहते हैं मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि से किसी से ना मरूं और जितने 12 महीने हैं उन 12 महीनों में भी ना मरूं। ब्रह्मा जी देखते हैं कि अब इतनी तपस्या की है तो ब्रह्मा जी उसको वरदान दे देते हैं और प्रहलाद महाराज उस समय जन्म ले लेते हैं। प्रहलाद महाराज को अब कयादु भी आ गई, वो भी तपस्या करके आ गए। प्रहलाद महाराज जाते हैं गुरुकुल में, बहुत सुंदर शिक्षा है प्रहलाद महाराज की। गुरुकुल में जब वो होकर आते हैं तब प्रहलाद महाराज से पूछते हैं हिरण्यकश्यप को, प्रहलाद क्या सीखा है बताओ मुझे। तभी प्रहलाद महाराज बताते हैं कि मैंने यही सीखा है कि भगवान की भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बताते हैं कि मुझे ये पता है वनम गतो व हरिमाशय, कि इसी संसार में जो ये घर जंजाल जो है उसको छोड़कर हमें वृंदावन में चले जाने के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और षंडमर को बोलते हैं कि इसको ये क्या पढ़ाया तुमने, गुरुकुल में जो शुक्राचार्य के पुत्र होते हैं। बोले इसको क्या सिखाया तुमने, बोले हम नहीं सिखाते, इसको पता नहीं कौन सिखाता है। प्रहलाद से पूछते हैं प्रहलाद आपको कौन सिखाता है, तभी प्रहलाद बोलता है कि पता नहीं कौन ही सिखाता मुझे, मन में है ना कृष्ण जो है वो उसके अंदर इतना आकर्षण है, कृष्ण मुझे इतना भगवान मुझे इतना आकर्षित करते हैं तो मैं मुझे हम सारे जितने भी जीव है ना वो लोहे की तरह है और कृष्ण ना चुंबक की तरह है। तो लोहा जो होता है चुंबक अगर सामने आएगा तो खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ेगा ना, तो इसलिए खुद ब खुद मेरा आकर्षण भगवान की ओर जाता है। तभी षंडमर्थ बोलते हैं तुम तो कहते हो सारे जीव आत्मा चुंबक की तरह है और लोहे की तरह है और भगवान चुंबक की तरह है, तो ये चुंबक खाली तुमको ही क्यों अट्रैक्ट करता है, हमको क्यों नहीं करता। तभी प्रहलाद महाराज बोलते हैं जब लोहे को जंग लग जाता है ना तब चुंबक अटैक नहीं करता, तुम लोगों का लोहा है ना वो जंग लग गया है उसको, उसको पहले हरि नाम के जब से पहले अपना जंग होता हो तो भगवान तुमको आकर्षित करे। हमारे साथ भी ऐसा है, भगवान तो अट्रैक्ट करते हैं, भगवान का नाम ही कृष्ण है तो वो आकर्षित करते हैं, लेकिन हमारा जो लोहा है ना वो जंग लगा हुआ है, इसलिए भगवान अच्छे नहीं लगते, संसार अच्छा लगता है। तो भले दिल करे या ना करे हमको नाम जप करना चाहिए। महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम हरि नाम संकीर्तनम, जब भगवान का नाम जप करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, तो फिर क्या होगा, ये जंग उतर जाएगा और फिर भगवान प्यारे लगने लगेंगे। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज जो है वो बताते हैं। और फिर एक बार क्या होता है, प्रहलाद महाराज के गुरुजन बाहर जाते हैं और प्रहलाद महाराज सारे असुर जितने भी गुरुकुल में जितने भी असुर बालक थे उनको बुलाते हैं और बोलते हैं मैं तुमको एक सुंदर शिक्षा देने वाला हूँ, गुरु रोजाना पढ़ाते हैं, आज मैं पढ़ा रहा हूँ। और वो पढ़ाते हैं कौमारा आचरे प्राग्यो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदर्थम दुर्ग अर्थदम, कि जो मनुष्य जीवन है ना वो बहुत मुश्किल से मिलता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं बहुत मुश्किल से संसार में मनुष्य का जन्म मिलता है, इसलिए कौमार आचरित प्राग्यो है असुर बाल को बचपन से ही बुद्धिमान बनो और भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो, क्योंकि मुश्किल से मिला है कभी भी चला जाएगा। जरूरी नहीं कि तुम लोग बड़े भी बनो, जवान भी बनो, बूढ़े भी हो, आज से अभी से इसी समय से हरि का नाम जप करना शुरू कर दो, क्योंकि बाद में थोड़े बड़े हो जाओगे फिर तुम्हारा दिल करेगा स्टडी करके, फिर बोलोगे कि भाई अर्निंग करने के लिए किधर जॉब करें, जॉब करने जाओगे धन कमाओगे, फिर बोलोगे विवाह करें, फिर विवाह करोगे पत्नी आएगी, फिर तो है ना नाम जब होगा ही नहीं और फिर पत्नी आने के बाद संतान होगा, उसी में आप लोग है ना भगवान को भूल जाओगे। इसीलिए समय अभी है, अभी से ही भगवान को याद करना शुरू कर दो। और फिर जब शंड और अमर देखते हैं कि इस तरह से वो भगवान सारे बच्चों को है ना भड़का रहा है, तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि भाई तुमको मैं हम लोग अपने गुरुकुल में रख ही नहीं रहे। फिर उसको हिरण्यकश्यप को जाके बोलते हैं कि ये जो आपका बच्चा है ये पहले तो खुद खाली भक्ति करता था, अभी तो इसने प्रचार शुरू कर दिया, सारे भक्तों सारे जितने हमारे शिष्य हैं उनको भी भड़का रहा है, तो इसको आप संभालो हम नहीं लेके जाएंगे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को मारने का भरपूर प्रयास किया, कभी हाथियों के पांव के नीचे कुचलने का प्रयास किया, कभी तो सर्पों की कोठरी में डाल के उसको डसवाने का प्रयास किया, कभी पहाड़ की चोटी से ले जाकर उसको नीचे गिराने का प्रयास किया, कभी होलिका अपनी चुनरी लेके आई कि मुझे तो वरदान है कि मैं नहीं जलूंगी लेकिन जिसको गोद में बिठाऊंगी वो जल जाएगा। लेकिन यहाँ से हमें ये देखना चाहिए कि संसार में हमें जितने भी कष्ट मिलते हैं चाहे किसी के भी द्वारा मिल रहे हैं, अगर भगवान के अंदर श्रद्धा है, अगर भगवान के अंदर हमारा पूरा विश्वास है, तो संसार की कोई भी शक्ति हमें कष्ट पहुंचा नहीं सकती है। आज भी भगवान उतने ही हमारे हैं जितने के प्रहलाद के थे, भगवान का नाम उतनी शक्ति आज भी रखता है, नाम के अंदर आज भी उतना ही बल है जितना के उस समय था। आज अगर हम सुरक्षित अपने आप को अनुभव नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि भगवान के नाम की शक्ति कम है, उसका मतलब ये है कि हमारे अंदर श्रद्धा कम है। तो इसलिए हमको बार बार ये कथाएं सुननी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी से प्रहलाद चरित्र को 100 बार सुना। रूप गोस्वामी पूछते हैं महाप्रभु आप प्रहलाद चरित्र बार बार क्यों सुनते हो? तभी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैं ये प्रहलाद चरित्र तब तक सुनना चाहता हूँ जब तक मेरे अंदर भी भगवान के नाम के प्रति इतनी श्रद्धा न उत्पन्न हो, इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो कि जितना भी बड़ा शंड और अमर तो राक्षसी कृत्या को उत्पन्न करते हैं और वो कृत्या जो है वो प्रहलाद को मारने के लिए उत्पन्न करते हैं, लेकिन कृत्या जब वो भगवान का नाम लेता है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, तो उस समय कृत्या जो है वो प्रहलाद को नहीं बल्कि अपने दोनों गुरुओं को मार डालती है। तो हमारे पीछे चाहे जिन लगे, चाहे भूत लगे, चाहे ढाकनी लगे, चाहे कुछ भी हो, कितना भी बड़ा राक्षस हो, लेकिन भगवान से बड़ा कुछ नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है, तीनों लोकों में 14 भवन में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो भगवान से बढ़कर हो। जितनी भी शक्तियां हैं उसके मूल में भगवान श्री कृष्ण है। आपके मन में जब भी कोई भय हो तभी बताओ भगवान का नाम जो है, जो आप अगर आप नाम जप करते हो, यदि आपके मुख से हरे कृष्ण महामंत्र का जप निकलता है और आप बोलते हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, तो फिर संसार की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती है। लेकिन हमारी श्रद्धा कितनी कम है, जिस हाथ से माला जप करते हैं उसी आंख में किसी ना किसी पीर फकीर का धागा भी बांध के रखते हैं कि भाई वो हमें सुरक्षा करेगा। तब भगवान देखते हैं कितनी श्रद्धा है इसके अंदर। जिस हाथ में माला होती है उसी में लाल पीले अंगूठियां भी बना डाल के रखते हैं कि भाई वो हमें किसी की कभी कोई है ना चार दिन भी अगर बुखार नहीं खत्म होता है तब किसी इधर उधर घूम रहे होते हैं यही सोचते हैं ना। आप देखो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण के लिए शास्त्र कहता है हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पति, मतलब एक पतिव्रता स्त्री जो है उसको चाहे कुछ भी चाहिए होगा वो किधर जाएगी, अपने पति के पास जाएगी ना, और किसी कोई भी उसकी प्रॉब्लम है वो किधर जाएगी, अपने पति के पास जाएगी। अगर वो अपने पति को छोड़कर किसी और की ओर देखती है इसका मतलब वो समझती है कि मेरी ये प्रॉब्लम मेरा पति सॉल्व नहीं कर सकता, तभी तो वो दूसरी ओर जा रही है। उसी तरह से हम अगर कृष्ण को छोड़कर किसी और की ओर जाते हैं इसका मतलब है कृष्ण के ऊपर विश्वास ही नहीं है। और माफ कीजिएगा, जो हमारी प्रॉब्लम आपको लगता है कि कृष्ण सॉल्व नहीं कर सकते, तीनों लोकों में कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो कृष्ण से बढ़कर हो, जो आप समझते हो कि ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसको भी शक्ति तो भगवान ने दी है। इसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्ते यजन अविधि पूर्वक, जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा श्रद्धा से करते हैं वो भी मेरी ही पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं तेपी मामेव कौन्ते, वो भी मेरी पूजा करते हैं परंतु वो तरीका सही नहीं है, वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि आप मेरी ही पूजा करो। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम।
प्रहलाद महाराज जो है ना वो बहुत ही सुंदर शिक्षा देकर फिर वापस उसको जब चंडोर मग छोड़ के आते हैं तभी हिरण्यकश्यप उनसे पूछते हैं कि प्रहलाद कहाँ है तुम्हारा भगवान। तभी प्रहलाद कहते हैं पिताश्री भगवान तो सब जगह है, अत्र सत्र विसर्ग हर जगह पे है। तो बोला कि अच्छा भगवान हर जगह पर है तो क्या इस खंभे में भी है। तभी प्रहलाद महाराज कहते हैं हाँ भगवान तो इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप जोर से खंभा फाड़ते हैं, जोर से गदा मारते खंभा फटके भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। नरसिंहदेव भगवान की, लेकिन उस समय भगवान वहां पर थे नहीं। ऐसा नहीं था कि कोई प्ले हो रहा है, जैसे आजकल प्ले होता है पहले एक स्तंभ बनाया जाता है पीछे किसी को गेटअप दिया जाता है नरसिम्हा भगवान का। उस समय भगवान प्रकट हुए थे, इसका मतलब है भगवान आज भी हर जगह हैं। जब भक्त को विश्वास होगा ना कि भगवान हर जगह हैं, तो वो हर जगह प्रकट भी हो सकते हैं। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यते तांस तथैव भजामि हम, जो जिस भाव से मेरा स्मरण करता है उसी भाव से मैं उसे दर्शन देता हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर युद्ध होता है हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिम्हादेव भगवान का, और नरसिम्हादेव भगवान देखते हैं संध्या समय आया है चौखट पे लेकर आकर हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ने लगते हैं। हिरण्यकश्यप हंसने लगता है, बोलता आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? तभी बोलते मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है ना मैं घर के अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। नरसिंहदेव भगवान बोलते हैं देखो मैं तो चौखट पे लेके आया हूँ। बोला मुझे बोला ना मैं पृथ्वी पे मरूंगा ना आकाश में मरूंगा। बोला मेरी गोद में बैठे हो, मेरे घुटनों पे हो, तुम तो ना पृथ्वी पे हो और ना ही आकाश पे हो। तो बोला मुझे है कि ना मैं अस्त्र से मरूंगा। तो भगवान कहते हैं देखो ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मैं तुम्हें अपने नाखूनों से मार रहा हूँ। तो बोला मुझे तो ये वरदान मिला है ना तो मुझे कोई ना मनुष्य मार सकता है ना ही कोई पशु मार सकता है। बोलता देखो ना तो मैं मनुष्य हूँ ना ही मैं कोई पशु हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वो शेर के जैसे थे और नीचे से पूरे मनुष्य के नर सिंह। तो बोला फिर भी हंसने लगे, बोला फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। बोला क्यों? बोला मुझे ये वरदान मिला है कि 12 महीनों में किसी भी महीने में मैं मरूंगा नहीं। तभी भगवान बोलते हैं तुम्हारे मारने के लिए तो मैंने 13वां महीना बनवाया है, देखो ये 12 महीने नहीं है, ये तो पुरुषोत्तम का महीना है, इसमें तुमको मैंने मारा। तो उस तरह से जो हिरण्यकश्यप है उनको फाड़ते हैं, उनकी अंतड़ियां निकाल के। भगवान इतना क्रोध में होते हैं, इतना क्रोध में होते हैं कि सारे देवी देवता आते हैं भगवान की स्तुति करने के लिए। हिरण्यकश्यप के वध होने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है। शिव जी बोलते हैं आपने बहुत अच्छा किया जो इसको मार डाला, क्योंकि मेरा काम प्रलय करना, ये तो प्रलय कर रहा था। शिव जी को देखते हैं नरसिंहदेव भगवान, फिर गुर्राते, फिर ब्रह्मा आते बोलते इसने तो हमें परेशान करके रखा था, फिर गुर्राते। इंद्र बोलते मैंने जीवन में कभी कोई काम नहीं किया, इसने तो मुझे अपना नौकर बना के रखा था। तो फिर भी है ना नरसिंहदेव भगवान क्रोध शांत नहीं होता है। तब लक्ष्मी महारानी को बोलते सारे देवी देवता कि आप तो पत्नी हो ना, आप इनको शांत करो। लक्ष्मी महारानी आगे जाना चाहती है लेकिन उनके ऊपर भी गुर्राते हैं। तो लक्ष्मी महारानी बोलती है नहीं भाई, अभी तो इसका मूड ठीक नहीं है, मैं नहीं जा रही हूँ आगे। फिर प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि प्रहलाद तुम्हारे लिए इन्होंने ये उग्र स्वरूप धारण किया है, आप ही इनको शांत कीजिए। इतने से प्रहलाद है, इतने विशाल नरसिंहदेव भगवान है, सारे देवी देवता माला देते हैं, जाओ आप प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान को पहना क्यों। प्रहलाद महाराज देखते इतने ऊपर है मैं कैसे पहनाऊं। नरसिंहदेव भगवान जो प्रहलाद को देखते हैं, छोटे से प्रहलाद है, टखना जो होता है ना पेड़ का वहां तक आते हैं। फिर नरसिंहदेव भगवान प्रहलाद को गोद में उठाते हैं और यहाँ पे खड़ा करते हैं। यहाँ पर नरसिंहदेव भगवान का इतना बड़ा विशाल शरीर है और विशाल मस्तक है, यहाँ पर खड़े होकर आराम से प्रहलाद महाराज जो है उनको माला पहनाते हैं, बहुत स्तुति करते हैं। नरसिंहदेव भगवान कहते हैं कि प्रहलाद तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ, मांगो क्या मांगते हो। जैसे ही ऐसे बोला प्रहलाद महाराज रोने लग जाते, इतना रोते हैं। बोला क्या हुआ। बोला मैंने आपसे प्रेम किया था, कोई सौदागिरी थोड़ी की थी, आप मुझसे मांगने के लिए बोलते हो। मैं तो प्यार में क्या सौदा होता है क्या, मैं आपसे कोई मांगने के लिए थोड़ी आपकी भक्ति की थी। तभी नरसिंहदेव भगवान बोलते नहीं प्रहलाद, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमको अपने दिल से देना चाहता हूँ, मेरी खुशी है तुम मुझसे कुछ मांगोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तभी प्रहलाद महाराज कहते बार बार कहते हो मांगो मांगो मांगो, हृदय में तो तुम रहते हो ना, इसका मतलब ये कि हृदय में तुमने देखा होगा कि मेरे हृदय में किसी वस्तु की इच्छा है, तभी तो तुम मांगो मांगो कह रहे हो ना। अगर देना ही चाहते हो ना भगवान, तो आप मुझे इतना दो कि मेरे हृदय में आपसे प्रेम करने के अतिरिक्त कभी और कोई इच्छा आ ही नहीं। एक ही इच्छा हो मेरी कि मैं आपसे प्रेम करूं, मेरे हृदय में अगर कोई इच्छा है तो उसको निकाल फेंक दो, यही मैं मांगता हूं। और फिर प्रहलाद महाराज जो है उनको बहुत प्रेम करते हैं नरसिंहदेव भगवान। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे एक ही बात का दुख है कि मेरे पिताजी जो है वो सारा जीवन आपकी भक्ति नहीं कर पाए, मैं अच्छा पुत्र नहीं हूं, मैंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, आप उनके ऊपर कृपा अवश्य कीजिएगा, उनको उनके अपराधों को क्षमा कर दीजिएगा। तभी प्रहलाद महाराज को भगवान कहते हैं कि प्रहलाद तुम्हारे पिता की बात कर रहे हो, तुम्हारे जैसा भक्त जिसके कुल में उत्पन्न होता है ना, उसकी 21 पीढ़ियां आगे की और 21 पीढ़ियां पीछे की सब तर जाती हैं, तुम फिक्र मत करना, तुम्हारे पिता को तो मैं तुमसे पहले भी अपने धाम में लेके जाऊंगा। नरसिंहदेव भगवान की, सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की, भक्त वत्सल नरसिंहदेव भगवान की, भक्त श्रोमणि प्रहलाद महाराज की। उसके उपरांत युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि जो है वो वर्णाश्रम धर्म के विषय में बताते हैं। और उसके बाद 8वें स्कंद में बहुत ही सुंदर गजेंद्र मुख मनवंत्र का एक है ना, मनवंत्र के विषय में बताया जाता है। जैसे मैंने बताया था मनवंतरेषां वसुधा, तो वहां पर एक कथा आती है कि एक त्रिकूट पर्वत था, वहां पर एक हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। वो बहुत ही बलवान था, इतना बलवान था कि जब वो गजेंद्र जब चलता था तो सारे पशु पक्षी उस जंगल से चले जाते थे। और बहुत ही विशाल उसका शरीर होता था, उसके बहुत सारे पत्नियां थी, बहुत सारे बच्चे थे। जब वो चलता था सारे वृक्षों को उखाड़ता फिरता, सारे शेर चीते सब गायब हो जाते थे उसकी गजेंद्र की आवाज सुनकर। एक दिन उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, एक जो नदी है उसके अंदर पानी पीने के लिए जाता है, और जैसे पानी पीता है तो उसके बहुत सारे बच्चे बाहर खड़े हैं, सबको पानी पिलाता है और सूंड में पानी भर भर के उनके ऊपर डालता है। उसी जल के अंदर एक मगरमच्छ बैठा होता है, तो मगरमच्छ को जब लगता है कि इतनी देर से ये हमारे क्षेत्र में आकर हलचल कर रहा है, तो मगरमच्छ क्या करता है, उसके पैर को पकड़ लेता है। तो यहाँ शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये हाथी कोई और नहीं, ये तो हम ही हैं। हम संसार में भगवान ने हमें भेजा है कि आप इधर जाकर भक्ति करो और मुझे प्राप्त करो। और यहाँ पर हम भी अपने बच्चों को खाना खिलाने में, पानी पिलाने में, मजा करने में, स्विमिंग पूल में जाने में, सिनेमा में जाने में अपने आप को इतना इतना बिजी कर लेते हैं, इतना आनंदित कर लेते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता। फिर जो काल होता है हमारा पाँव पकड़ लेता है, और काल कैसे पाँव पकड़ता है, पहले हमारा बचपन खा जाता है, फिर हमारी जवानी खा जाता है, फिर हमारा बुढ़ापा। आज हमारा जितना जितना एज है ना, हर साल तो हम सालगिरह मनाते ना कि एक साल सालगिरह है, मेरी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन उतना उतना समय तो काल खा गया है ना। किसी की 20 साल, किसी की 25 साल, किसी की 30 साल की आयु खा गया। अब यहाँ कोई कोई तो यहाँ तक बचे हैं, शरीर पूरा खा लिया है, खाली गर्दन बची है, तब भी बोलते हैं समझ जाओ, समझ जाओ। और आज गजेंद्र की कथा से पता चलता है सब बच्चे पहले ना, पत्नियां पहले कोशिश करती हैं कि उसको निकालें, कैसे भी करके उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। फिर क्या करते हैं, सब एक लाइन बनाते हैं, एक के पीछे एक, कोई उसके किसी की सूंड पकड़ते, फिर पूछ पकड़ते, फिर सूंड, इसे लाइन बनाते, चेन बना के उसको खींचने का प्रयास करते हैं। लेकिन गजेंद्र जो है वो इतना पकड़ा हुआ होता है मगरमच्छ ने कि वो बाहर नहीं आ सकता, बहुत पीड़ा में होता है। बहुत हजार साल तक गजेंद्र जो है वो युद्ध करता है, और लेकिन धीरे 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 गजेंद्र की शक्ति खत्म हो जाती है। तब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गजेंद्र जो है वो खुशकी का प्राणी है, धरती का प्राणी है, और मगरमच्छ जो है वो पानी का प्राणी है। पानी के अंदर उसको शक्ति मिलती है, लेकिन हाथी को पानी के अंदर है, वो बार बार उसको खींच रहा है, तो उसको शक्ति नहीं मिल रही। उसी तरह से हम भी है ना, भगवान के धाम के प्राणी है, इस भौतिक जगत में को पकड़ लेती, हमारे पास भी शक्ति नहीं है। माया के साथ युद्ध करने का एक ही तरीका है, भगवान कहते हैं दैवी येष गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है, इसको तुम पार नहीं कर सकते, एक ही तरीका है, मेरी शरण में आ जाओ। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति थे। तो गजेंद्र बहुत सारे सालों तक पति बच्चे सबने कोशिश की, लेकिन कोई भी बचा नहीं सका। उसी तरह से हमें भी कोई नहीं बचा सकेगा, एक दिन काल आएगा, हमें भी हड़प करके जाएगा। इसलिए पहले से ही भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो सब लोग छोड़ के चले गए, धीरे 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 सब खत्म हो गए, अकेला रह गया गजेंद्र। और जब उसने देखा कोई नहीं है मेरी रक्षा करने के लिए, तब उसे लगा कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। फिर उसने जोर से, बहुत ही सुंदर गजेंद्र प्रार्थना है, जोर से अपने नेत्रों को भगवान की ओर देख के, ऊपर देख के बोलने लगा, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायादि भीमहि, कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं जानता था कि मैं पहले सोचता था कि संसार मेरी रक्षा करेगा, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि आप ही पुरुषायादि बीजाया, आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, आदि हो, आप अनादि हो, आप ही मेरी रक्षा करोगे। और सब भगवान पूछते हैं किससे रक्षा करूं, तभी वे कहते हैं माद्री प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन संत। यहाँ कहते माद्रिक प्रपन्न, मेरा जैसा पशु आपकी शरण में आ गया है, जिसको एक पशु ने पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मुक्त कर दो। भगवान कहते हैं मेरे पास क्यों आए हो, बहुत सारे देवी देवता हैं, किसी के पास भी तुम चले जाते हैं तो कहते हैं ना कि भाई देवी देवता जल्दी सुनते हैं, भगवान देर से सुनते हैं। तो गजेंद्र बोलते हैं हाँ, किसी के साथ भी जा सकता था, लेकिन वो धन से दे सकते हैं, संतान दे सकते हैं, वो संसार का वैभव तो दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति कोई नहीं दे सकता। मुक्ताय, मुझे मुक्त होना है, यहाँ गजेंद्र से सीखना चाहिए कि कोई देवी देवता हमें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। भगवान भगवत गीता में कहते हैं यान्ति देव व्रता देवान पितरों यान्ति पितरों व्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि मम। देवताओं की पूजा करोगे देवताओं के पास जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितरों के पास जाओगे, भूतों की पूजा करोगे भूतों के पास जाओगे, लेकिन जब तक मेरी पूजा करके मेरे पास नहीं आओगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए गजेंद्र बोलते हैं मुक्ति तो केवल तुम ही दे सकते हो ना, इसलिए आपके पास आया हूँ। तो बोला ठीक है मैं ही दे सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों दूं तुम्हें मुक्ति। तब भगवान को कहते हैं भूरी करुणा है, क्योंकि आप करुणा के सागर हो, किसी जीव को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। भूरी करुणा है, आप तो करुणा के सागर हो, कृपा करो मुझे ना केवल इस पशु के पास से छुड़ाओ बल्कि मुझे जन्म मरण के चक्कर से भी छुड़ाओ, मैं आपको आपकी शरण में आया हूँ। वहां पर भगवान जो है वो वैकुंठ में बैठे हुए हैं। रुक्मणी उनसे पूछती है प्रभु क्या किसको याद कर रहे हो, तो बोला वो मुझे पुकार रहा है। भगवान को जैसे ही हाँ उस गजेंद्र ने पुकारा है, लक्ष्मी महारानी पूछ रही किसने पुकारा, तभी वो बोलते हाँ बाहर आते हैं, तभी गरुड़ है ना जो गरुड़ वो अपनी स्पीड पकड़ के बैठता है, शायद भगवान मेरे पीछे बैठेंगे। गरुड़ को भगवान ऐसे हटाते हैं, बोलते नहीं तुम्हारी गति तो बहुत धीमी है, उसको कष्ट हो रहा है, मेरे भक्त को कष्ट हो तुम तो बहुत स्लो चलोगे। हालांकि गरुड़ जो है वो भगवान गरुड़ को हटा दे, तो यहाँ पर लक्ष्मी महारानी चाखड़ी रखते हैं, भगवान की चप्पल रखती हैं। भगवान बोलते हैं इसको पहनने में टाइम लगेगा, उसको भी हटा के भगवान अपनी गति से हाँ बोल के यहाँ से उतरते हैं और ठी नीचे बोलते हैं, और नीचे आकर गजेंद्र को सबसे पहले है ना अपना सुदर्शन चक्र हाथ में होता है, सबसे पहले मगरमच्छ का सर काटते, मगरमच्छ की मुख अंदर से एक दिव्य आत्मा निकलती है और भगवान जो और एक पार्षद आते हैं और उसके विमान के अंदर बिठा के जाते हैं। गजेंद्र देख रहे हैं, गजेंद्र ने क्या किया था, समुद्र के अंदर एक कमल का फूल है उसको अपनी सूंड में पकड़ के खड़े थे, उसका उसकी मुक्ति होते हुए देखते हैं और कहते हैं भगवान मैंने प्रार्थना की मैं कितना दुखी था और आपने उसका उद्धार किया। तभी भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का उद्धार बाद में करता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त के चरण पकड़ के बैठा था उसका उद्धार मैं पहले ही कर देता हूँ। गजेंद्र को भगवान कहते देखो मगरमच्छ ने तुम्हारे चरणों को पकड़ा था ना, तो पहले उसकी उसकी न ट्रन आई उसके बाद तुम्हारी। तभी भगवान को गजेंद्र जो है वो पुष्प अर्पण करते हैं और भगवान गजेंद्र की भी मुक्ति कर देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो है ना अब क्योंकि देवताओं और राक्षसों का युद्ध नहीं हो रहा होता है, तब देवताओं को भगवान ये परामर्श देते हैं कि तुम अपनी शक्ति बढ़ाओ ताकि रोज रोज तुम जब है ना देवताओं के साथ राक्षसों के साथ युद्ध करते हो तो तुम हार जाते हो। तब भगवान बोलते कैसे, देवता बोलते हम कैसे अपनी शक्ति बढ़ाएं। तब भगवान कहते तुम ऐसा करो साथ संधि कर लो, संधि करके फिर समुद्र मंथन करो। तभी देवता बोलते हैं कि हमारे साथ क्यों संधि करेंगे, बोले समुद्र से उनको बोलो कि समुद्र से बहुत सारे रत्न निकलेंगे और जो जो रत्न निकलेंगे तो हम आधा आधा कर लेंगे, तो इस तरह से उनको बताओ। तो अगर आधा आधा करने के लिए उनको बोलेंगे तो फिर वो आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तभी भगवान उनको बताते जिस तरह सांप और चूहा आपस में दोस्ती करते ना, एक वो होता है सपेरा, वो सांप पकड़ने के लिए जाता है उसको सांप नहीं मिलता तो चूहा पकड़ लेता है और फिर रास्ते में सांप भी मिल जाता है आगे जाकर, तो उसे पिटारी के अंदर सांप और चूहे को डाल देता है। फिर अंदर जब सांप देखता है चूहा भी बैठा हुआ है, चूहे को तो खा सकता है, लेकिन उस टाइम पर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, हम दोनों दोस्ती करते, तुम्हारे दांत बहुत तेज है ना, तुम पिटारी के अंदर होल बनाओ और उसके अंदर से हम दोनों निकल जाएंगे। चूहा बोलता है भाई ये तो बहुत अच्छा है, सांप जैसा दोस्त मिल गया, पिटारी के अंदर होल बनाते हैं। तो सांप पहले बोलता है देखो मेरा बहुत लंबा शरीर है ना, पहले मैं बाहर जाता हूँ, अगर शिकारी बाहर जागा हुआ होगा वो सपेरा तो मैं उसको मार डालूंगा, फिर तुम तो बहुत छोटे हो ना तुम फटाफट निकल आना। बोला ठीक है। सांप बाहर जाता है और ऐसे खड़ा हो जाता है और जैसे चूहा निकलता है उसको खा जाता है। तभी देवताओं को भगवान बोलते हैं तुम लोग भी ऐसे करो, जो भी पहले तो है ना इनको बोलो कि दोस्ती करते हैं, फिर जब अमृत निकलेगा ना फिर मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम लोगों को अमृत और जो राक्षस है ना उनको अमृत नहीं पिलाऊंगा। तब भगवान को बोलते संभालोगे ना? बोला हाँ मेरे को विश्वास नहीं है, संभाल लूंगा। तो फिर जाते हैं देवता महाराज बलि को बोलते हैं कि आप हमारे साथ संधि कर लो, हम समुद्र मंथन करेंगे, उसमें से जो भी निकलेगा आधा आधा करेंगे। तो बलि महाराज एग्री हो जाते हैं। समुद्र मंथन होता है तो उसके लिए ना पर्वत चाहिए होता है, उस पर्वत को लेकर आना होता है, और पर्वत को जब लेके आते अंदर समुद्र के बीच में रख के देते हैं। लेकिन जैसे बीच में समुद्र के पर्वत रखते हैं तो पर्वत हिलने लगता है, और बोलते हैं वासुकी को रस्सी बनाएंगे, मंदार पर्वत को बीच में रख के वासुकी को रस्सी बनाएंगे, और वासुकी जो है ना जैसे पर्वत को बीच में रखते हैं तो पर्वत हिलने लगता है, तो भगवान उस समय कच्छप का रूप धारण करते हैं, कश्यप अवतार, बोल कश्यप भगवान की, और उसके ऊपर पर्वत को बिठाते हैं, को लेके आते हैं ऐसे रस्सी से डोरी, जैसे लेके आते हैं तो देवता पहले भगवान क्या करते हैं, देवताओं के साइड में होते हैं और मुख वाला साइड पकड़ते हैं, और जो राक्षस होते हैं उनको दोम वाला साइड मिलता है। तभी राक्षस बोलते हैं कि नहीं भाई, दोम वाला तो अशुद्ध साइड होता है ना, उससे मलमूत्र होता है, तो हम लोग है ना मुख वाला साइड लेंगे। भगवान बोलते दे दो इसको, दे दो दे दो, ताकि क्योंकि रगड़ होगी तो मुख से कितनी अग्नि निकलेगी। तो सारे जो राक्षस हैं वो मुख वाले, आप भगवान की आज्ञा के लिए आगे बढ़ोगे ना तो विष निकलेगा, और एक वैष्णव ही विष को स्वीकार कर सकता है। इसीलिए बार बार ये बताया जाता है वैष्णव का संग करना चाहिए। वैष्णव का संग अगर हम करते हैं तो अवश्य हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो शिव जी विष को ग्रहण करते हैं, समुद्र से 14 रत्न निकलते हैं, ऐरावत हाथी निकलता है जो कि इंद्र को दिया जाता है, उच्च शर्वा गोरा निकलता है जो कि महाराजा बलि लेते हैं, उसके अतिरिक्त चंद्रमा निकलता है जो शिव जी को यहाँ पर लगाया जाता है, और कौस्तुभ मणि निकलती है जो नारायण भगवान लेते हैं, लक्ष्मी महारानी निकलती है जो स्वयं वरमाला लेके आती हैं, भगवान को स्वीकार करती हैं, और इस तरह से करते 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 अंत में धन्वंतरी महाराज जो है वो अमृत का कलश लेकर आते हैं, और अमृत के कलश को लेकर जैसे ही आते सारे राक्षस और देवता जो है ना वो सब उधर ही मंदार पर्वत को छोड़ते हैं, उधर वासुकी को छोड़ते हैं, और पकड़ते हैं धन्वंतरी को, और धन्वंतरी को खींच के उसमें से अमृत कलश ले लेते हैं, और देवताओं को भी हटा के सारे जो राक्षस हैं वो आपस में लेते हैं लेकिन पी नहीं सकते, वो उससे छीन रहा है, वो उससे छीन रहा है, वो उससे छीन रहा है। तो सारे देवता बोलते हैं इतनी मेहनत करी है हमने इस कलश को प्राप्त करने के लिए, ऐसा नहीं ये सारा अमृत ही गिरा दे। भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान एक सुंदर स्वरूप धारण करके आते हैं, मोहिनी का अवतार धारण करके भगवान बोलते हैं चिंतित मत हो, मैं हूं ना, मेरे होते हुए ना तो अमृत की क्षति होगी और ना ही देवताओं को कोई नुकसान होगा। याद रखिए जब हो ना, फिर चाहे सारे असुर आपके खिलाफ हो जाएं, सारा संसार आपके खिलाफ हो जाए, भगवान आपकी सहायता करेंगे, भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। भगवान के कभी भी भगवान भगवत गीता में कहते कौन्तेय प्रतिजानी है नमे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो इस तरह से देवताओं को ना आतिथ्य देकर भगवान जो है वो मोहिनी का अवतार धारण करके देवताओं और राक्षसों की सभा में आते, सारे जितने भी राक्षस हैं और देवता हैं मोहिनी को देखकर पागल हो जाते हैं। इतनी सुंदर स्त्री तो हमने जीवन में कभी नहीं देखी, और उसको बोलते हैं देवी आप कहाँ से आई हो, अकेले यहाँ अंधेरे में कहाँ विचरण कर रही हो, आपके पिता कौन है, आप कौन से लोक से आई हो। तो वो है ना इतने अभी भगवान है, जब वो पुरुष के स्वरूप में आते हैं तब भी इतना आकर्षित करते हैं कि सब उनकी ओर देखते रहते हैं। तो फिर हम सोच सकते हैं कि ये भगवान जब स्त्री के स्वरूप में आए होंगे तो भगवान कितने आकर्षित लग रहे होंगे। तब भगवान और तभी मोहिनी जो है अब स्त्री है, बोलते खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आए, इतनी नजाकत के साथ किसी से बात नहीं करती है, वो सब पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रही है, ऐसे ही लटकती मटकती जा रही है, बोली मत बात करो लेकिन हमारा झगड़ा खत्म करवा दो। सारे राक्षस जो है वो प्रार्थना करते, बोलते मैं कैसे झगड़ा खत्म करवाऊं। तो बोले देखो झगड़ा एक ही बात का, हम दोनों एक ही बाप की संतान है, दोनों असुर हैं और देवता है कश्यप महाराज की संतान है ना, बोले असल सभी पाण बाहर आयो बट झगड़ो में अमृत जो है वो जन दास्तान पियो असो दास्तान पियो तो अमृत खड़ो असि विराय दियो तभी मोहिनी बोलती ना बाबा ना इतना बहुत बड़ा दायित्व है डिस्ट्रीब्यूशन करना तो मुझे आता ही नहीं है और कहां से इतना राक्षस आयो अगर मैंने राक्षसों को पिलाया थोड़ा सा भी कम जाति हो गया तो क्या करेंगे बोलेंगे उसको ज्यादा दिया मुझे कमाया मुख ही खाई चलो तो मैं नहीं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तभी है ना राक्षस बोलते नहीं हम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको जिसको पिलाना हो जितना पिलाना हो नहीं पिलाना हो जैसे पिलाना हो आप सारा जो है ना आपके ऊपर है सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है आप कोई आपको नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं पिलाया उसको पिलाया तो तुम है ना ये लो क्योंकि इतनी सुंदर थी बस उनको लग रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन यही करे कलश जो है ना मोहिनी को दिया राक्षसों को बोला सब लोग स्नान करके यहाँ पर पालती मीच के बैठ जाओ देवता इस ओर दानव इस ओर और सबको है ना अमृत अभी वो अमृत को कैसे करती है वो राक्षसों को बोलती है देखो अमृत का कलश है ना और हमेशा हम जब कोई चीज जूस वगैरह बनाते हैं तो नीचे से थिक होता है ऊपर से पतला पतला होता है तो राक्षसों में बोलती देखो ऊपर से पतला पतला है ना मैं पतला पतला इन देवताओं को पिला देती हूँ फिर जो नीचे से जो गाढ़ा गाढ़ा होगा ना वो तुमको पिलाऊंगा तो बोलते कैसे भी करो हम तैयार है तो वो क्या करती है वो सारा जो देवताओं को ही पिला रही होती है ना भी राक्षसों में से एक राक्षस ने देखा कि ये सारा जो अमृत है वो तो देवताओं में खत्म करेगी राक्षसों को तो मिलेगा ही नहीं तो एक राक्षस जो है वो देवताओं का स्वरूप धारण करके बीच में बैठ जाता है इस तरह बीच में आकर बैठ जाता है और जैसे ये देवता पी रहे होते हैं ना ऊपर से अमृत आ रहा होता है ऐसे करके पी रहे होते हैं तो वो भी पी रहा होता है तो इधर से चंद्रमा और सूर्य देख लेते कि ये तो राक्षस है बोलते मोहिनी ये तो राक्षस है और जैसे ही उन्होंने सुना है कि ये राक्षस है और राक्षस ने अमृत पी रहा हुआ उसी टाइम पर मोहिनी जो है वो चतुर्भुजी स्वरूप धारण करके उसकी गर्दन काट देती है और जैसे ही गर्दन काट देती है लेकिन वो तो इधर तक तो उसने पी लिया ना अभी वो तो मर ही नहीं सकता जो अमृत पीता था उसके लेकिन उसके ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि उसकी गर्दन से जो खून निकलता है वो राक्षस है ना उसकी गर्दन से जो खून निकलता है उससे लसन और प्यास बनते हैं लसन और प्यास जो है वो राक्षस के खून से इसीलिए कभी हमको पता है ना भगवान को भोग नहीं लगते तो सब लोग बोलते ना लसन प्यास में क्या है ये तो वेजिटेबल्स हैं प्लांट्स हैं तो इसको तो खाने से क्या है लेकिन उसके अंदर तमोगुण है और कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि भाई लसन प्यास के अंदर बहुत पावर है इससे ये बीमारी खत्म होती है ये बीमारी तो इसलिए होता है क्योंकि देखो अभी अमृत उसने पिया था ना तो अमृत के अंदर तो गुण होंगे ना तो भले राक्षस का स्वभाव है उससे स्वभाव तो राक्षस का होता है भगवान उसको स्वीकार नहीं करते लेकिन उसके अंदर कुछ गुण भी आ गए तो ऐसे आचार्य गण बताते हैं कि भगवान अध्याय के श्लोक नंबर 30 में कहते हैं कि यज्ञ शिष्टा सुना संतो मुच्यंते सर्वकील विषय भुंजते थे त्वगम पापा ये पचंत आत्म कारणा कि अगर आप भगवान को प्रसाद भोग लगा के खाओगे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे लेकिन अगर आप भगवान होगे तो आप नरक में जाओगे जो भी खा रहे हो पाप खा रहे हो तो आपको नरक में जाना पड़ेगा ये गीता में लिखा हुआ है तो अब देखिए सपोज अगर किसी को यहाँ पर एक फोड़ा निकल टेस्ट आता होगा हो सकता है कुछ बीमारी भी खत्म होती होगी लेकिन भगवान ने कहा जो भोग नहीं लगेगा वो खाओगे पाप खाओगे तो फिर नरक में जाओगे तो अगर थोड़ा सा टेस्ट छोड़ दें थोड़ा सा है ना अगर कोई बीमारी सही भी होती है बोलते हैं ना कि भाई इससे साइनस की बीमारी सही होती है लहसुन से ये होता है इसके ना तो वो छोटी छोटी बीमारी शरीर की सही हो भी जाती है लेकिन आत्मा यदि उसका उसकी मुक्ति तो नहीं होगी जब भगवान को भोग लगा के बगैर खाएंगे तो थोड़ा आते हैं उनको पुनः राज्य मिलने वाला होता है लेकिन ऐसा होता है कि मंथरा जो है कि कई कभी दिमाग खराब कर देती है और उनको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ता है ये सब लीला आप सब जानते हैं कि किस तरह से रावण का वध होता है यहाँ पर रावण वध होता है और भगवान जो है लव और कुश का जन्म होता है और उनको राज्य प्राप्त होता है, ये सब नवे सिकंद में आता है। तो हमारे पास क्योंकि कल का ही दिन है, वहाँ पर कल हम कृष्ण लीला करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की, कलयुग आधार महामंत्र की, हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन यज्ञ की, शिला प्रभुपाद की, गौरव प्रेमानंद।